ओम शांति। मधुबन की भूमि सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली भूमि है कि किसी का कोई भी एक संकल्प मात्र भी जो मन में आया वो कंप्लीट न हो, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, हर प्रकार से बाबा हम सबकी पालना करते हैं। तो कई भाई बहनों का संकल्प था सतीश भाई जी कि डॉक्टर साहब की क्लास नहीं हुई, तो आज वो भी दिन आया कि इनका जाने का दिन है, परंतु लेट ट्रेन होने के कारण बाबा ने वो भी संकल्प आपका कंप्लीट किया है। और व्यस्त होने के बावजूद भी जैसे ही सतीश भाई जी को फोन किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पानीपत के भाई बहनों से हम जरूर मिलने और क्लास कराने आएंगे, तो इसीलिए आप सभी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। अधिकतर 10 से 15 साल वर्ष के ही सभी भाई बहने भट्टी में हैं और आप सब माता जी को जानते ही हैं। दादी जी के अंग संग रहकर दादी जी की सेवा की है, यज्ञ सेवा में आप सदैव तत्पर है। कभी भी कोई बात, हमने इतने साल करीब 29 साल हुए ना, 30 साल हुए हैं, कभी भी ऐसा नहीं, कभी क्लास चेंज करनी होती है, कभी ऊपर नीचे होता, पर कभी भी सतीश भाई जी के मुख से या चेहरे से वो प्रसन्नता की झलक कभी कम नहीं हुई है। बाबा ने इतना आपको भरपूर कर रखा है और आप मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता है, क्योंकि आप सब जानते हैं भाई साहब कैड की ट्रेनिंग कराते हैं और बहुत से भाई बहने इस ट्रेनिंग लेकर के ऑपरेशन करने से भी मुक्त हुए हैं। खान पान और राज्यों के द्वारा जॉटरी ब्लॉक होती है, उसको किस तरह से हम उस पर विजय पा सकते हैं, वो सारा प्रोग्राम आप कराते रहते हैं। तो ऐसे बाबा के अनन्य रत्न जो सदा दिल में बैठे रहते और अनेकों को भी बाबा के दिल में बिठाते हैं, ऐसे दिलाराम बाप के दिल के डॉक्टर हमारे भ्राता सतीश भाई जी है। तो आज आपको राजयोग के द्वारा विकर्म विनाश कैसे होते हैं, इस विषय पर आपको बहुत गहराई से वो प्रकाश देंगे सतीश भाई।
ओम शांति। देखो पानीपत के भाई बहन आए तो यहाँ पानी आया, नहीं तो यहाँ काफी समय से पानी नहीं था, क्योंकि जब 20 तारीख तक पानी की बरसात नहीं हुई तो सभी सोच रहे थे शायद इस साल सूखा पड़ेगा, पर आप लोग आए तो पानी शुरू हुआ ना। तो पानीपत के भाई बहनों कितनी महिमा है ना जी। हाँ पत्र की, बाबा ने पत्र की है ना, चलो बहुत अच्छा। चलिए एक मिनट फिर साइलेंस में मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, क्योंकि विषय ऐसा है कि विषय में ये मतलब एक तरह का निचोड़ कह सकते हैं, आपकी जो भट्टी का निचोड़ जैसे ना, इसमें समझिए आप अपना पूरा समझ लेंगे कि जैसे आपने सभी ने बहुत अच्छी भट्टी की है और मधुबन तो मधुबन है, हम लोग भी मधुबन में आने के लिए इसी बहाने हमको मधुबन में आने का चांस मिलता है। नॉर्मली हम लोग मधुबन में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, किंतु ये क्लास होते तो हमें मधुबन में आने का, चार धाम की यात्रा करने का चांस मिल जाता है। आपके आपके भाने हमारा भी भला हो जाता है। चलिए एक मिनट फिर बाबा को बहुत गहराई से मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं और फिर जो बाबा सुनाए। ओम शांति। देखो हमारा सभी का प्यारा और सभी का मीठा बाबा क्या करने आए हैं दुनिया में, इस दुनिया में क्या करने आए हैं, हम सबको पावन बना के पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोदी का बच्चा बना के अपनी गोदी में बिठा के राजयोग की पढ़ाई पढ़ा के और फिर क्या करते हैं, हमको पावन बना देते हैं, निर्विकारी बना देते हैं। इस समय हम संपूर्ण विकारी थे, शूद्र माना संपूर्ण विकारी, मतलब पूरा रोम रोम, आत्मा तो है ही विकारी पतित, किंतु इवन जो शरीर भी है वो भी पूरा रोम रोम विकारों से भरा हुआ, आंखें नाक कान मुख सब रोम रोम में विकार भरे हुए थे। तो बाबा ऐसे बच्चों को आकर के हमें क्या बना देते हैं, एकदम संपूर्ण निर्विकारी, क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जब अहिंसा परमो धर्म हम कहते तो अहिंसा परमो धर्म दो बातें आती है, पहली है काम विकार की हिंसा, जैसे ही हमारे अंदर काम विकार की हिंसा खत्म करते, जितने जितने काम विकार की हिंसा हमारे मन वचन कर्म संबंध संपर्क और स्वप्न में खत्म होती जाती, और स्वप्न के बाद वैध संकल्प भी अपवित्रता है। बाबा ने बार बार कहा ना, वैध संकल्प भी अपवित्रता है। अगर वैध संकल्प भी हमारे मन में आता, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ब्राह्मणों के भी ऐसा करते हैं क्या, ये भी अपवित्रता है। ये वैध संकल्प हुआ ना, ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट है, उस ड्रामा में उस आत्मा को वही उस क्षण वही करना है, और जो होना था वही हो रहा है, और जो होना था वही हुआ है, राइट। तो उसमें हम क्वेश्चन देश करें, ये भी अपवित्रता है। तो जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता, ये अपवित्रता खत्म होती जाती, तो ये पवित्रता का ताज, लाइट का ताज हमारे सिर पर आता जाता, उतना ही बड़ा हमारा लाइट का ताज होता जाता। जो जितनी जितनी काम विकार की पवित्रता हमारे अंदर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक समाप्त हो जाए, और फिर बाद में अभी जो बाबा जो बार बार हमें ध्यान दिलाते हैं वो वैध संकल्प पे दिलाते हैं कि बच्चे ब्राह्मणों में स्थूल अपवित्रता नहीं रही है अभी, किंतु अभी क्या हो गया, अभी वैध संकल्प बच्चों के बहुत चलते हैं, वो हमें अभी समाप्त करने हैं। तो जितनी ये पवित्रता अपवित्रता खत्म होगी, उतना क्या होगा, हमारे आसपास लाइट का ताज आ जाएगा, और फिर जितना जितना क्रोध खत्म होता जाएगा, लोभ खत्म होता जाएगा, मोह खत्म होता जाएगा, अहंकार खत्म होता जाएगा, और इनके बहुत सारे बाल बच्चे हैं, इनके बहुत सारी फैमिली परिवार इनका बहुत बड़ा है, जैसे उसका अंश भी हमारे अंदर से खत्म होता जाएगा, क्यों तो हमें सेवा का ताज मिलता जाएगा, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज मिलता जाएगा। जैसे क्रोध करने वाला भले उसमें कितना पवित्र रहता हो, तो अगर क्रोध करे तो क्रोध करता हो तो उसको सेवा कर पाएंगे, सेवा हमेशा संगठन में होती है ना, अकेला आदमी तो सेवा नहीं कर सकता है, कर सकता है, संगठन में सेवा करते हैं, मिलजुल के सेवा करते हैं। वो व्यक्ति अपने आप क्रोध करता रहे साथ वालों से साथियों से तो सेवा नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। उसके अंदर लोभ हो तो भी सेवा नहीं कर सकता है। लोग कई बार तो होता है पैसे का, कई बार नाम मान सम्मान का लोग होता है, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे पूछें, तो भी सेवा नहीं हो पाई। मोह हो तो किससे लगाव झुकाव हो जाए तो सेवा नहीं हो सकती, हो सकती। अहंकार हो तो सेवा नहीं हो सकती। ऐसे इनके बाल बच्चे हैं बहुत सारे हैं ना, आलस वाला व्यक्ति हो, आलस वाले व्यक्ति सेवा कर सकता है ना, नहीं कर सकता ना। अलबेलापन केयरलेस हो, कहे कि मैं कोई सेवा का समय रखे, इतने बजे हम इकट्ठे मिलेंगे, इतने बजे आएंगे, और हम उस समय ना पहुंचे तो अलबेलापन हो, केयरलेस हो, नहीं कर सकते ना। दूसरे में दोष निकालने की आदत हो, बदला लेने की भावना हो, शक हो, अनुमान हो, चिंता हो, भय हो, जल्दीबाजी करने वाला आदमी हो, ईर्ष्या द्वेष करने वाला आदमी हो, तो हम बाबा हमें विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज नहीं दे सकता है, राइट। तो अहिंसा परमो धर्म है ना, ये मतलब अहिंसा, किसी को किसी बात से भी हम हर्ट ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं, राइट। तो ये हमारा लक्ष्य है अल्टीमेट ना, अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है। तो चलिए हम चलते राजयोग द्वारा विकर्म विनाश कैसे हों। तो अब हमें ये हमारा जो है अभी, क्योंकि राजयोग द्वारा विकर्म विनाश, सबसे पहले तो समझने की बात है विक्रम क्या चीज है, विक्रम क्या चीज है। विक्रम ना विकारों के वश किए हुए कर्म, विकारों के वश किए हुए कर्म विक्रम कहलाते हैं। अब कर्म क्या है, कर्म खाली हाथ पैरों से किए हुए कर्म नहीं है, आंखों से देखना भी कर्म है, मतलब कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। आंखों से देखना भी कर्म है, आंखों से पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, और सूंघना भी कर्म है, हाथ कर सकते हो, छूना भी कर्म है। तो अगर मैंने विकारों के वश, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश कुछ देखा या कुछ पढ़ा, सुना, बोला, खाया, लोभ के वश खा लिया, चीज आज बहुत अच्छी बनी है, आज बहुत स्वाद है, आज मेरे स्वाद की सब्जी है, आज मेरे स्वाद की चीज है, एक चपाती को दो चपाती खा ली, तो वो भी विकर्म है, राइट। कोई ऐसी फालतू की मैगजीन पढ़ ली है ना, वो भी विकर्म है। कोई दूसरे की बात सुना रहा है, दुनियादारी की बातें सुना रहे हैं, आप बैठ के वहां कान लगा के सुन रहे हो, ये भी पाप है, ठीक है। किसी कोई मेरी महिमा सुना रहा है और मैं महिमा सुन रहा हूँ बड़े आराम से, वो भी पाप है। अहंकार में जाकर सुन रहा हूँ ना, मेरे नाम ऊंचा कर रहे हैं। जो कर्मों की गुह्य गति बहुत ही गुह्य गति है, राइट, बहुत ही गहन है, गहन गति है। कौन सा कर्म हमारा विकर्म बन जाता है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है ना। इवन चिंता के वश होकर कोई कर्म करना, डर के कोई कर्म करना, डर के देखना, डर के सुनना, डर के पढ़ना, डर के खाना खाना, डर के कोई भी काम करना, डर के भी करना, चिंता के वश होके करना, शक के वश करना, शक हो किसी के ऊपर और उसके पीछे पीछे हम देखें, चेक करें, ये तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, ये भी पाप है। अनुमान लगाए वो व्यक्ति, इसको ये करना था, उसने ऐसा कर दिया होगा जबकि उसने नहीं किया हुआ, हमारे मन में शक है, अनुमान है, वो भी विकर्म है। दूसरे में दोष निकालना, इसने ऐसा किया, गलती मेरी है, नहीं इसने ऐसा किया ना तो मैंने ऐसा किया, ये भी विकर्म है। किसने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, उसके अपोजिट सोच लेना, इसको इससे बदल लूंगा या बदला लेके दिखाऊंगी, ये भी विकर्म है। इवन प्रेशर में आना है, प्रेशर में डालना, किसको, किसी चीज के प्रेशर में लाना, आप खुद आना या किसी को डालना, ये भी पाप है, ठीक है। ईर्ष्या करना, वो भी पाप है, राइट, बहुत सारे पाप है ना। आलस करना, मैं तो कहता हूँ मुरली सुनने का टाइम है, सुबह का टाइम, या अमृत वेले में आलस कर देना, ये भी पाप है। बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल कौन सी है, बाबा ने कहा, बहुत बार बाबा कहते हैं, तो सबसे बड़ी भूल कौन सी है, बाप को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, बाप को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है, अमृत वेला मिस करना तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है, मुरली सुनना बहुत बड़ा पाप। मतलब बाबा ने जो कहा हुआ ना, ये जो विकारों के वश कुछ भी, मेरी नींद आज पूरी नहीं हुई है, आज छुपा सो लेते हैं, अमृत वेला बाद में कर लेंगे, मुरली बाद में सुन लेंगे, ये भी विकर्म है, ठीक है। और बाबा का बनने के बाद हर विकर्म का सजा कितनी हो जाती है, 100 गुना। 63 जन्मों के तो विकर्म हमारे सिर पे हैं, पाप कर्म हमारे सिर पे हैं, और इस बाबा का जब से बने तब से कितने विकर्म हुए हैं। कई बार तो मैं सोचा करता हूँ कि जब से बाबा के बने तब से विकर्म इतने हुए हैं कि अभी वो पीछे वाले तो नहीं, पहले इसी जन्म में कितने विकर्म हो गए बाबा का बनने के पास, तो बाबा का बनने के पहले तो कितने किए होंगे, कितना कुछ बाबा कह रहे, इतना काम है, तुम लोग सोते कैसे हो, काम इतना पड़ा है। बाबा कहते थे, हम बाबा को नहीं, जो पुराने भाई बहन बताते, दादियां बताती, दादी बाबा कहते ना, दादी बाबा अभी हम आराम कर लें, कहते काम पूरा हो गया, विक्रम सारे विनाश हो गए जब आराम करते हो, जब तक काम पूरा ना हो आराम हराम है, तो कितना काम है ना, कितना। इसलिए बाबा कहते हैं वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी क्या है, वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी है, अगर आप वो पेज पे पढ़ो ना, मेरे को याद है शायद पेज नंबर कौन सा, 102 नंबर पेज है, 2007-2008 की वाणी है ना, 2 फरवरी 2008 की वाणी है, अव्यक्त वाणी है बाबा की। तो बाबा ने वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी बताई है ना उसमें, तो उसमें बाबा ने बताया कि वारिस क्वालिटी मतलब क्या, जिसके हर श्वास में हर कदम में, हर संकल्प में, हर श्वास में बाबा और यज्ञ समाया हो, साथ साथ मन वचन कर्म संबंध मन वचन कर्म तन मन धन सब में बाप और सेवा समाई हो। बेहद किसकी सेवा करने की समर्थी हो, जो सारे विश्व की सेवा कर सके, वो वारिस क्वालिटी आत्मा बनती है। मतलब श्वासों श्वास जिनको बाबा की याद रहती है, श्वासों श्वास हर संकेत बाबी ने वरदान था ना, बहुत सुंदर अमूल्य रीति से अमूल्य समय व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव था ना। मतलब हर सेकंड हर संकल्प अमूल्य रीति से व्यतीत करना, हर सेकंड हर संकल्प हर श्वास मतलब बाबा की याद और सेवा में बीते, तब अमूल्य रतन बनते। काम थोड़ा है, ज्यादा है, ज्यादा ही है ना। और फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना जिसके जिसका मन, जिसका 100% मन कॉन्शियस हो, कॉन्शियस माना चेतन हो। अभी के मनुष्यों का चेतन मन सिर्फ 5 से 8% है। 5 से 8% मन हमारा चेतन है, माना कॉन्शियस माइंड है, और लगभग 12 से 15% मन हमारा सबकॉन्शियस है, और 80% मन अनकॉन्शियस है। और बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होनी चाहिए। अब जब मेरा 80% मन अनकॉन्शियस है, अचेतन है, जिसका मुझे पता ही नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, और 12 से 15% मेरा मन सबकॉन्शियस है, जिसका भी मुझे पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, वो जब सोते हैं तब 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 कॉन्शियस होता है, तब वो जाग जाता है, सपने आते हैं उससे। तो 5 से 8% ही मेरा मन कॉन्शियस, मतलब मेरा मन 5 से 8% ही कॉन्शियस माना मेरे वश में है। देखो आज की मूल्य हमने सुनी, सुबह सुबह सुनी, याद है बुद्धि का ताला कैसे खुलता, किन बच्चों का खुलता है। बाबा ने कहा 21 जन्म कमाई करनी है आपको ना, और ये अभी यही जन्म में करनी है ना, बाद में तो समय नहीं मिलेगा ना, है ना। तो बाबा ने आज कहा ना ये, तो आप हमारा अटेंशन रहा सुबह से लेकर कितनी देर रहा, भले आप बट्टी में बैठे हो, आप साक्षी होकर देखो अपने आप, आपको कोई काम नहीं है, खाना बनाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, दुकान पर जाना नहीं है, कितने परसेंट आपका अटेंशन रहा इस बात पे कि मुझे 21 जन्मों के लिए कमाई करनी, भले क्लास में बैठे बैठे भी अटेंशन रहा, मधुबन में बैठे तो भी कितना परसेंट अटेंशन रहा, रियल सच्चाई से देखोगे तो 10% अटेंशन मिल रहा होगा कि मुझे कमाई जमा करनी है। तो ये जो है इतना मतलब, क्योंकि हमारा मन इतना, हमें इतना काम करना बाकी है, इसकी तो हम गहराई में चलते हैं कि हमारा कैसे, किस तरह से हमारा मन और बुद्धि कैसे है, और उसके बस कहाँ कहाँ हमारे विक्रम जमा होते हैं, कैसे विक्रम बनते हैं पहले तो हम ये देख लें, और फिर हम इसकी गहराई में जाके हमें विक्रम विनाश कैसे करने उसमें चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेंगे हमारी जो बुद्धि है ना, बुद्धि जिसे हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि में जैसे बुद्धि और मन संस्कार तीन चीजें ना, आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, और ये यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि संस्कार ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। जैसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, तो जब ये तीनों हमारे मन बुद्धि संस्कार हमारे पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सत्व प्रधान हो जाएंगे, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। हमारी बुद्धि सत्व प्रधान है, सातों गुणों से भरपूर है, अभी संस्कार सातों गुणों से भरपूर है, हमारा मन सातों गुणों से भरपूर है, तब हम सत्व प्रधान फरिश्ता बनेंगे। ये तीनों सूक्ष्म शक्तियां तब, और वो कब होगा, जब आत्मा सत्व प्रधान बनेंगे तो तीनों सत्व प्रधान बन जाएंगे। और सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए पहली बार, जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, दादा लेखराज के रूप में साक्षात्कार हुआ, तो निज स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवम, तो बाबा को साक्षात्कार हुआ कि मैं शिव हूँ, है ना, मैं शिव हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, तो बाबा को यही साक्षात्कार हुआ, तुम भी यही है, तुम भी जैसे आत्मा हो, तुम भी ज्ञान स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो, पवित्र शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख जैसे मैं हूँ ऐसे तुम भी हो। विनाश का साक्षात्कार हुआ, ये दुनिया जो है सारी समाप्त होने वाली, खत्म, विनाश को पाने वाली। तो बाबा ने जो है बाबा की पहले, ब्रह्मा बाबा की पहले बुद्धि को पवित्र बना दिया, आते ही बुद्धि को पवित्र बना दिया और मन को भी, मन में लक्ष्य दे दिया। मतलब बाबा ने एकदम, बाबा ने बता दिया, बच्चे तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे याद करो और घर को याद करो, अभी घर जाने का समय आ गया। बाबा की बुद्धि में ये बात भर दी तो बाबा की बुद्धि पवित्र हो गई। क्योंकि बाबा ये तो अभ्यास बहुत समय से कर रहे थे, 1932 से कर रहे थे, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि से बाबा बात करते थे, है ना। बुद्धि को बाबा क्या कहते थे, बुद्धि को पीरू वजीर और बच्चू, इसको मन को, बुद्धि को, हाँ पीरू बच्चू बादशाह और पीरू वजीर, मतलब इसके नाम से बुलाते थे, है ना, मन बुद्धि से बात करते थे कि तूने मुझे आज धोखा क्यों दिया, तूने ऐसा क्यों, आज ऐसा क्यों किया, सुबह मैं तुझे ऐसे, मैंने वैसे बोला, तूने आज ऐसा क्यों नहीं किया। तो बाबा आत्मा का बहुत गहरा अभ्यास कर रहे थे, आत्मिक स्थिति का। बाबा के आने साकार में, बाबा को ये साक्षात्कार होने से पहले बाबा का बहुत पुरुषार्थ था, डायरी भरते रहते थे बाबा, 1932-33 की डायरी है, अभी भी शायद मैं समझता हूँ रखी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो बाबा ऐसे बात किया करते थे ना, हमने देखी हुई है वो डायरी, लच्छू दादी हमको दिखाती थी। तो जब ये, तो बाबा को, बाबा ने पहले बुद्धि को पवित्र बना दिया और फिर बाबा ने बाबा के मन में ये डाल दिया कि ये नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया का साक्षात्कार, तुम्हें ये नई दुनिया बनानी है, विष्णु का साक्षात्कार करा दिया, तुम्हें ये बनना है। तो मन में ये लक्ष्य दे दिया, मन में एम ऑब्जेक्टिव बुद्धि में भर दिया, शांति धाम और बाप की याद भर दी, और मन में भर दिया सुख धाम भर दिया, तुम्हें ये बनना है और तुम्हें ये दुनिया बनानी है, राइट। तो बाबा का मन और बुद्धि बाबा ने पवित्र कर दिया, ब्रह्मा बाबा का। और ये मन और बुद्धि जो पवित्र किया, यही सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड फॉर्म में शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन है। फिर इसलिए ब्रह्मा बाबा को शुरू से जिसने भी देखा, फरिश्ते के रूप में देखा, राइट। कभी ब्रह्मा बाबा को इसने जल्दी में नहीं देखा, कभी चिंता में नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी किसी भी, मतलब किसी भी दुनियावी लौकिकता में नहीं देखा, किसी ने भी देखा नहीं, किसी दादी ने देखा नहीं, किसी भाई ने देखा नहीं, किसने देखा, पुराने तो यहाँ कोई बैठे नहीं है, पर पुराने हम तो दादियों से बहुत हमारी रूढ़ रिहान होती रही, मतलब जब से हम मधुबन आए उसके पहले भी बीच बीच में आते थे तो दादियों से बहुत रूढ़ रिहान, पर्सनली हम लोग 10-10 बजे बैठा करते, दादी के साथ बैठा करते थे, सभी दादियों के साथ बैठते थे, कभी निर्मल शांता दादी के साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, बहुत रूढ़ रिहान कर दादियों से बातें पूछते थे। तो दादी ने कहा बाबा ने कभी किसी ने ऐसे नहीं देखा, किसी रूप में नहीं देखा, दुनियावी रूप में कभी नहीं देखा। किंतु बाबा जब 68 में, बाबा 68 जब बाबा हो इफेक्ट होने से पहले, तो बाबा ने संदेशी को भेजा, एक ऊपर भेजा था कि जाओ ऊपर, ऊपर जो बाबा बैठा उस देख के आओ। तो उसने आके बाबा को बताया, बाबा 67 पहले भेजा था, फिर बाबा ऊपर वाला था, बाबा तो बहुत चमकीला है, आप तो इतने चमकीले नहीं हो। तो बाबा ने फिर उससे और पुरुषार्थ करना शुरू किया, फिर बाबा ने दोबारा भेजा, दूसरी बार भेजा, फिर बाबा ने कहा हाँ बाबा अभी भी वो ज्यादा चमकीला है। तो बाबा ने बहुत पूछा, बाबा ने गीत भी बंद करा दिए, जब पहले गीत था मुरली में गीत बजता था, 68 में बाबा ने गीत भी बंद करा दिए, खाली बाबा आपने देखा कहीं मुरली में गीत नहीं होते, सीधी मीठे बच्चे शुरू हो जाता है, ओम शांति करके बाबा प्रश्नोत्तर तो बाद में शुरू हुए, मीठे बच्चे भी बाद में शुरू हुआ, ये तो बनाया गया बाद में, किंतु मुरली पहले सीधी मुरली शुरू होती थी, मुरली के पहले गीत बजता था, चंद्रास दादा पहले वो बजाते थे कैसेट और उसके बाद फिर मुरली शुरू होती थी। तो बाबा ने गीत भी बंद करा दिया था फिर ना, फिर बाबा बहुत बहुत उपरांत रहने लगे, है ना। तो बाबा एकदम चलते फिरते फरिश्ते मतलब से। बाबा ने मतलब 33 वर्ष बाबा ने खूब गहन तपस्या की और अपने संस्कार जो थे पुराने संस्कार वो भी भस्म कर दिए, उनका परिवर्तन किया। तो पूरा मन बुद्धि और संस्कार तीनों जब संपूर्ण पवित्र बन गए तो बाबा संपूर्ण फरिश्ता बन के उड़ गए 18 जनवरी को। तो बाबा तब था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तीन बाबा के फार लास्ट के वो थे। निराकारी आत्मा निराकारी है, निर्विकारी मतलब बाबा की स्थिति बन गई थी निर्विकारी और निरहंकारी। उस स्थिति का भी भान ना रहे, उस स्थिति का भी अभिमान ना हो कि निराकारी स्थिति का भान भी ना रहे कि मैं निराकारी बन गया हूं, निर्विकारी बन गया हूं, ये इसका भी अहंकार सूक्ष्म में भी ना आए। इस त्याग का भी त्याग कर दिया बाबा ने, उन्हें निरहंकारी। फिर बाबा ने भेजा लास्ट में दिसंबर, दादियां बताया दिसंबर के आसपास बाबा ने एक बार फिर भेजा था उसको, दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट वीक में ऐसे कुछ बाबा ने भेजा था फिर संदेशी को कि अभी जाओ देख के आओ ऊपर, बाबा ऊपर वाले बाबा को देख के आओ। तो उसने कहा बाबा ऊपर वाला बाबा भी इतना ही चमकीला है जितना आप चमकीले हो, अभी दोनों बाबा समान हो गए है ना, ब्रह्मा बाबा ऊपर है व्यक्त और साकार। तो ये निशानी थी कि बाबा संपूर्ण हो गए थे। तो बाबा ने जब ये पूरा मतलब पूरा, तो सूक्ष्म बतन कुछ और नहीं है, शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का 100% पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार है। हम ब्राह्मणों को बाबा ने दिव्य बुद्धि गिफ्ट में दे दी है, जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं ना बाबा हमको दिव्य बुद्धि गिफ्ट में दे देता है। दिव्य बुद्धि में जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो, ABCD भर, ज्ञान सार रूप में क्या है, ABCD है ना, आत्मा, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन ना संबंध, मुझे आत्मा के सरल संबंध शिव बाबा के साथ है, और D फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हम सब आत्मा एक्टर हैं और हर आत्मा कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, चाहे वो हमारे माता पिता है, चाहे भाई बहन है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे भाई, चाहे पड़ोसी हैं, कोई भी है, हमारे ऑफिस में काम करने वाले हैं, हमारे घर में काम करने वाले हैं, हमारे सेंटर में रहने वाली बहनें हैं, जो भी है वो हमारे पिछले जन्म में हमारे उनके साथ हिसाब किताब है कर्म सिद्धांत के अनुसार, और हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं हमारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, और बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, कर्म सिद्धांत के अनुसार। किसी व्यक्ति को हमने दुख दिया हुआ है वो हमें दुख देगा, पति बन के देगा, पत्नी बन के देगा, बच्चा बन के देगा, भाई बन के देगा, बहन बन के देगा, माँ बन के, बाप बन के देगा, पड़ोसी बन के देगा, और हमें लेना पड़ेगा। कोई हमें सुख दिया है तो हमें सुख लेना पड़ेगा, किसी को मारा है तो वो हमें मारेगा। याद है ना वो मुरली बाबा की, कि बाबा ने माताओं के बारे कहा था कि हमारा पति हमको बहुत मारता है, बाबा ने क्या कहा, बच्ची तुमने उसको पिछले में मारा हुआ है इसलिए तुमको मारता है ना? मतलब कोई भी अकारण बात नहीं हो रही है। और अभी सैटरडे की मुरली याद होगी, याद है कि कोई भी कर्म माफ नहीं होता है। हम बाबा से कहते बाबा सॉरी हमसे एक गलती हो गई, हमने जो कर्म कर दिया वो रिकॉर्ड हो गया, उसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा यानी कि सजा नहीं मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, और वो सजा हमको मिलेगी, वो सजा हमको सहनी पड़ेगी, है ना। किंतु क्या होगा, बाबा को बता दी इसलिए क्या होगा, अब बाबा हमको सावधानी दे देगा, बच्चे ये तुम्हारा कर्म नहीं, तुम्हें ये कर्म नहीं करना चाहिए, है ना? और अगर हम नहीं बताएंगे तो वो कर्म दोबारा होगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो हो गया ना, एक नियम है जो भी हम करते हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ भी हम करते हमारे अंदर रिकॉर्ड होता है, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, जो भी हम करते हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्ड होने के बाद दो बार करते हैं और रिकॉर्ड हो जाता है, तीसरी बार करते हैं और ज्यादा रिकॉर्ड, चौथी बार करते हैं और ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है, पांचवी बार करते हैं और रिकॉर्ड ज्यादा हो जाता है, और पक्का रिकॉर्ड होता जाता है। और वो कर्म जब हम एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो बार बार क्योंकि वो कर्म ऑलरेडी हो गया, वो सिचुएशन आएगी फिर वो दोबारा कर्म हो जाएगा, और हमने बाबा को बता दिया तो शक्ति मिल गई ना करने की, वो कर्म, वो विक्रम ना करने की, तो अगली बार हमसे वो आप कर्म नहीं होगा, तो आधा माफ हो गया, नहीं हो गया। अगर नहीं बताते तो दो बार होता, दो बार का सजा मिलती, अभी क्या हुआ, हमने एक बार बताया दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा तो हमारी सजा आधी होगी नहीं होगी, पर पहले वाला माफ नहीं हुआ, जो एक बार किया उसकी सजा तो मिलेगी। अभी मैं एक दिन सोच रहा था बैठा हुआ ऐसे ही, मैं सोचा कि अगर मैंने किसी से 500 रुपए उधार लिया हो 100 साल पहले, 500 रुपए उधार लिया और मतलब पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में उधार लिया, और इस जन्म में वो मेरे को देना, वो व्यक्ति मेरे सामने आए कि भाई साहब 500 रुपए मेरा उधार दो ना वापस, तो 500 रुपए देना बहुत सहज है, दे दिया। अब वो कहेगा भाई साहब ब्याज इसका, तो मैंने कहा ब्याज कितना है, कहता 52,48,00,000 रुपया। नहीं, 52,48,00,000 रुपया, सब 500 रुपए का ब्याज कितना हो गया, 52,48,00,000 रुपया। अब बताओ 52,48,00,000 कहाँ से लाऊं, कहाँ से आएगा 52,48,00,000 आएगा। तो इतना मतलब हिसाब किताब है। इसलिए कोई भी हम पाप करते हैं, छोटे छोटे पाप करते हैं, किसी को हम गलत करते हैं, सेवा लेते हैं किसी, अपने पास सेवाधारी सेवा लेते हैं, वही 100 साल के बाद कितनी गुना हो जाएगी समझो। किसी ने आपसे एक थाली आपने उठवाई, उससे भाई उठवाते ना बहनों से थाली कि मेरी थाली तुम मांग लेना, उठा के ले जाओ, तो आप सोचो 100 साल के बाद कितनी थालियां आपको उठानी पड़ेगी, कितनी थाली मांगनी पड़ेगी उनकी, 52,00,00,000 थाली मांगनी पड़ेगी। थाली मानते रहोगे मानते रहोगे मानते रहोगे खत्म ही नहीं होगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कभी सेवा किसी से मत लो जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं, अपना खाना खुद बना के खाओ, खुद सारे काम करो, जहां तक हो सके खुद अपना काम करो। मैं जब हिसाब किताब लगा उस दिन के बाद मैं थाली अपनी मांगनी शुरू कर दी खुद ही। कभी थाली मंजवाएंगे तो फिर बाद में थाली मांगनी पड़ेगी इनकी सबके, कोई भी काम कराएंगे तो हमें करना पड़ेगा, कपड़े भी अपने आप ही धो लो अच्छा है ना। जितना हो सके अपना काम खुद करो, हम मिलकर करो तो फिर अच्छी बात है, किंतु कोई दादागिरी करते नहीं घर में, मैं बड़ा मैं समझ मेरे काम तुम करो सब ऐसा, जहां तक मेरे हाथ पर चले। हाँ, वो ठीक अच्छी बात पर मैं आपको मैं तक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कर्मों की गुह्य गति बता रहा हूँ कि जो कर्म हम करते कितने मल्टीप्लाई, कितना ब्याज लग जाता है, कितना ब्याज हो जाता है। इसलिए आपने देखा कई बार हम अपने बच्चों के लिए हम उनकी इतनी सेवा करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटे छोटे से बड़ा करते हैं, फिर उनको इतनी सेवा करते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर कुछ करते हैं, बच्चे बोलते हैं मेरे लिए कुछ नहीं किया है ना, 20 साल का हो गया, 25 साल 30 साल का हो गया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरा जीवन ही खराब कर दिया। सोचते इतना तो किया ना, वो कहता है मेरे तो तुमने कितने दिए, तुमने 2,00,000 रुपए वापस नहीं करे मेरे अब तक ना, 52,00,00,000 वापस देने बाकी है ना, 48,00,000 वापस नहीं किया अभी तक, बाकी 52,00,00,000 तो अभी बाकी है और उस पर ब्याज लग रहा है, टाइम बीत रहा है ना, ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो इतना हमारा हिसाब किताब है, इतना हिसाब किताब है, इसलिए एक एक सेकंड की बात है, एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक श्वास की बात है। एक घंटा हमने वेस्ट किया ना, एक घंटा इधर उधर बातें करने का वेस्ट कर दिया, बाबा कहते एक सेकंड अभी का एक वर्ष के समान है। तो अगर हमने एक घंटा वेस्ट किया कितने हो गया, 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 सेकंड फिर एक घंटे में 60 मिनट, 3600 वर्ष के जितना हमने खराब कर लिया। ये बाबा के स्टेटमेंट है ना, मुरली में स्टेटमेंट है। हम चाहे तो इतनी टेंशन रखे अपने इतने विक्रम विनाश कर सकते एक घंटे में, जब आप थोड़ा सा गहराई में जाके आधे घंटे पूरा करेंगे, इसमें इसकी गहराई में चले जाओ थोड़ा सा, कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि के 4 एस्पेक्ट हैं। पहला इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, दिल भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। उससे कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जब हम सत्व प्रधान थे, जब सत्युग में जब पहला जन्म हमें ऊपर परम धाम से आए, ये अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हमारा जो है पावन सत्व प्रधान स्वरूप, उसमें हमारी क्या स्थिति है, आत्मा 7 गुणों से भरपूर है। मतलब हमारी जो दिल, हमारी कॉन्शियसनेस में ये 7 गुण भरपूर है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, यही दिल 7 गुणों से भरपूर है। और दिल से जो है 7 गुणों से भरपूर है, तो अंदर जो इससे हमारा विवेक बनता है, विजडम बनती है। दूसरा एस्पेक्ट बुद्धि का विवेक है, बुद्धि, मतलब विवेक, इसका विवेक है, विवेक। जब ज्ञान हमारे अंदर भरपूर है तो हमारे अंदर पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, तो हमारा विवेक परखने की शक्ति, विवेक माना परखने की शक्ति, यथार्थ है। यथार्थ माना हम एक सेकंड में परख सकते हैं ये ठीक क्या है, गलत क्या है। मैं आत्मा हूं, मुझे अपने को आत्मा समझ के, हर आज के बोलते ना आत्मा होकर के सुनो, आत्मा होकर के सुनाओ, आत्मा होकर के देखो, आत्मा होकर के सुनो मतलब बोलो, आत्मा होकर के हर काम करो। बाबा ने कहा आत्मा, बाबा जी सुनाते सुनाता वो सुनो और वही सुनाओ, हज की मुंडी में था ना ये बात, सेकंड पेज में थी। तो ये बाबा ने जो बाबा ने हमको बताया, तो ये जो है जितना हमें जितना साथ ज्ञान की गुह्यता हमारे अंदर, ज्ञान की गहराई हमारे अंदर होगी, उतना जो है हमारे अंदर उतनी पवित्रता, उतनी गहराई होगी, उतनी गहरी शांति होगी, उतना ही गहरा हमारे अंदर रूहानी प्यार होगा, उतना ही ज्यादा अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, उतना ही गहरा आनंद होगा। और देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो कि कई बातों को कई बार हम कहते जानते हैं कि शांति शब्द बोलते हैं, शांति का मतलब पता नहीं होता। प्रेम बोलते हैं प्रेम, प्रेम का मतलब पता नहीं होता। जब हम जितना हम एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं उतना अधिक हमारे अंदर क्या होता है, हमारी पवित्रता है ना, हमारे अंदर यथार्थता आ जाती है। मैं अपने को आत्मा समझता हूँ और अपने दूसरों को भी आत्मा देख करके बातचीत करता हूँ। आत्मा रियलाइज करके अनुभव करके मैं दूसरे से बातचीत व्यवहार में आता हूँ, आत्मा देख करके हर कर्म करता हूँ, ये पवित्रता है। फिर ये नहीं रहता डी 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 माना इसके इसके आधार पे हम नहीं कहते इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं कहते। फिर तो नॉर्मली क्या कहते, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा धोखा दिया, उसने मेरे को बहुत तंग किया, ये भी अपवित्रता है, राइट। खाली फिजिकल अपवित्रता की बात नहीं है, विकार की बात नहीं, खाली ब्रह्मचर्य की खाली बात है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा बाबा ने जानते थे, सब कुछ करते थे। जब बाबा ब्रिजकोठी में रहते थे तो पीछे एक वो था, पीछे शमशान घाट है ना, ब्रिजकोठी के पीछे पड़ता है शमशान घाट, देखा है आपने, पीछे शमशान घाट है, एकदम उसके पीछे शमशान घाट है। तो वहां एक, एक, एक साधु रहता था, वो साधु जो है सुबह सुबह उठते ही गाली देना शुरू करता था बाबा को, सुबह उठते ही गाली देना शुरू करता था जोर जोर से आवाज आवाज। तो बाबा के बच्चे जो होते थे, बाबा के जो बच्चे थे ना, बाबा उसमें जो बच्चे आते थे दूर दूर से मिलने, बाबा से मिलने आते थे, बाबा कहते हैं देखो गो पीछे गाली दे, बाबा देखो गाली देता है, इसको हम पिटाई करके आते हैं, इसको हम ऐसे करके आते हैं, इसको ऐसे भगा देते हैं। बाबा कहते ना बच्चे इसको कुछ नहीं कहो, ये बोलने दो इसको, कोई बात नहीं, ये तो मेरा मन मन को साफ करता है, मेरे रोज मेरा दोस्त है। तो बाबा को जरा भी ये फील नहीं होता था कि कोई गाली दे रहा है उसको रोके, कोई कुछ को कुछ कहे, नहीं कुछ भी नहीं। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा को लोगों ने गालियां दी, लो सब, बाबा ने कुछ नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, तो बाबा को किसने क्या क्या नहीं बोला, घर वालों ने बोला, बाहर वालों ने बोला, सबने बोला, बाबा ने कभी किससे कुछ नहीं कहा, कभी मन में जरा भी विचार नहीं। तो बाबा जैसा हमको बनना है वो है ब्रह्माचारी, तब हम पवित्र हैं। तो इस एबीसीडी से पवित्रता आती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। जब पवित्रता आई तो शांति आई, शांति माना सिर्फ पॉजिटिव विचार रह गए, अब ना नेगेटिव रहा ना व्यर्थ रहा, कोई नेगेटिव विचार मन में नहीं, कोई व्यर्थ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव विचार, उसको शांति कहते हैं, सिर्फ सत्य पर आधारित विचार, उसको बोलते हैं शांति, ठीक है। जब शांति मतलब अब ट्रुथ आ गया कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सब आत्मा, किसने धोखा दिया, दुख दिया, दर्द दिया, परेशानी दी, पैसा लूट लिया, कुछ भी कर लिया, निंदा की, गलानी की, वो उसके प्रति कोई संकल्प नहीं चला, और उससे हमने शांति कहा, और फिर शांति आ गई तो फिर हमने उससे, अभी सबके प्रति कोई कैसा भी है, मुझे सबकी केयर करनी है, अनकंडीशनल केयर, ये मेरी महिमा करता है इसके लिए ज्यादा इसकी केयर करूं, इसकी ज्यादा देखभाल करूं, ये मेरे को गाली देता है इसकी मैं केयर ना करूं, ये प्यार नहीं है। दोनों के प्रति एक जैसा केयर, एक जैसी देखभाल करना, एक जैसा ध्यान रखना दोनों के प्रति, अनकंडीशनल केयर और डिग्निफाइड आदर के साथ केयर, रेस्पेक्ट के साथ केयर, इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं रूहानी प्यार। ठीक है, गाली देने वाले के साथ, दुख देने वाले के साथ, धोखा देने के साथ वाले के साथ भी हमारे मन में उसके प्रति ये ना हो कि इसने ऐसा किया, इसको मैं इसलिए बात नहीं करूंगा, इसको देखूंगा नहीं, ये मुझे कुछ कहेगा, इसको मदद नहीं करूंगा। नहीं, सबको, बल्कि उनको ज्यादा मदद करनी, उनको ज्यादा केयर करना, क्योंकि हमें उनका हिसाब किताब देना बाकी है, और आदर के साथ करना, रेस्पेक्ट के साथ करना, इसको कहते हैं रूहानी प्यार। और ऐसे रूहानी प्यार से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय सुख माना वो सुख जिसमें इस इंद्रिय, पांचों इंद्रिय से ऊपर का सुख, देखने का सुख, एक तो होता है देखने का सुख, ये इंद्रियों का सुख, देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, छूने का सुख, ये सुखों से ऊपर, जब इंद्रियों के ऊपर चले गए हम, तो उसको बोलते हैं सुख, हैप्पीनेस कहते हैं, जॉय कहते हैं, राइट। और जब देहभान से परे चले गए हम, आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, देह का भान खत्म हो गया, समय की सीमा खत्म हो गई, समय का भान खत्म हो गया, टाइम और स्पेस के परे चले गए, उसको कहते हैं आनंद। अर्थात जिसमें कोई आन नहीं है, इस दुनियावी आन, आन माना जिसमें कोई आनंद, इसमें कोई आन ना हो, आन माना कोई दुनियावी बंधन ना हो, दुनियावी लिमिटेशन ना हो, उसे कहते हैं आनंद, बियॉन्ड, बियॉन्ड, सीमा नहीं है अभी कोई बात उस बात की, वो आनंद है, ब्लिस, इसको इंग्लिश में एक्सटेसी भी कहते हैं, एक्सटेसी, बियॉन्ड चले गए एकदम। और ये जो फीलिंग है आनंद की फीलिंग, जो आत्मा को जो आनंद की फीलिंग आती है, उससे परखने की शक्ति पैदा होती है। अब ये जो आनंद की फीलिंग आ गई, इसमें परखने की शक्ति आ गई, मुझे अब यही करना है। जैसे हमको, हम दिल्ली में थे, डॉक्टर थे, हमारी हार्ट स्पेशलिस्ट थे, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा नाम था, किंतु एक बार बाबा समझ आ गया, बाबा का मैसेज समझ आ गया, बाबा ने मुझे काम दिया, हार्ट का प्रोग्राम दिल्ली में बना, दिल्ली में रहते ही बना, मुझे समझ आ गया मुझे काम करना है और किस लिए करना है, बाबा क्यों कराना चाहता है काम, समझ आ गया, दीवानापन आ गया, बस अभी मुझे सब कुछ छोड़ देना है, कुछ धरती धरते उधर हो जाए, घर वाले कोई साथ में आए ना आए, कोई इसको प्रवाह हो ना हो, मुझे बस बाबा काम में लग जाना है। मेरे को लोगों ने पागल कहा, डॉक्टर कुत्ता हो गया, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के दिल, वहां जंगल में जा रहे हो, वहां कोई फैसिलिटी भी नहीं है, वहां पे जाके क्या करोगे, आप यहाँ पे रहो ना, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप यहाँ रिसर्च करना, यहाँ सब कुछ करना, हमें सब कुछ देंगे, नहीं, बस आनंद एक बार आ गया, पता लग गया बाबा ने मुझसे बात की, भगवान मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे ये काम करना है, बस सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा को एक बार अनुभव हुआ कि बस ये क्या, ये जो दुनिया आने वाली है, सोने की दुनिया, हीरे जवाहर सत्युग आने वाला, ये क्या मैं कोड़ियों का धंधा कर रहा हूँ, एकदम आया ध्यान, छोड़ दिया सब कुछ, भले दुनिया वाले लाख कहा, कुछ ने कहा, कुछ ऐसे कुछ मर्जी बोला, परवाह नहीं। तो ये जो आनंद की, ये परखनी शक्ति कि राइट काम अभी करना, राइट काम, ये राइट है, ये रॉन्ग है। मेरे को कहा कि आपको इतनी सैलरी देंगे, जितनी सैलरी आप कागज पे लिख दो हम आपको उतनी सैलरी महीने में देंगे, आप लिख दो कागज पे, आपको क्या चाहिए, पैसे कम मिलते हैं क्या, आप लिख दो कागज पे, हम आपको उतनी देंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जैसे, ये जब अंदर से फीलिंग आई ना, ये आना, ये प्रकृति शक्ति आ गई, राइट क्या, रॉन्ग क्या, और फिर निर्णय करने शक्ति, उसको बुद्धि कहते हैं। जिस चीज में आनंद आ गया ना, रियल आनंद आ गया, फिर उसके लिए परख लिया, विवेक ईश्वर जैसा हो गया और बुद्धि दिव्य हो गई, डिवाइन हो गई। अब जब बुद्धि डिवाइन हो गई तो इसको बुद्धि निर्णय बुद्धि कहते हैं। और फिर इसके आधार पे क्या होता है, इसके ऊपर विस्तार को सार बनाने शक्ति आ गई, पहाड़ जैसी बात को भी राई बना लिया, कुछ भी हुआ ये काम करना है, दो मिनट में काम के भागे हैं, भागना है बस, छोड़ना है मुझे कुछ नहीं, टिकना ही नहीं यहाँ पर, रहना नहीं, मुझे ये करना है, बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना माना छोड़ना, चाहे दुनिया इधर की तरह हो जाए, कोई नाराज हो उसको जो करना कर ले, मुझे करना। तो ये विस्तार को सामने आ सकती, समेटने की शक्ति, मन बुद्धि को तुरंत समेट के, ये नहीं कि समेट लिया, विस्तार को सार में भी समेट लिया, हम बैठ के कोने में आके बैठ भी गए और उसके बाद हम समेट ना सके, फिर बुद्धि जा रही है वापस, फिर दिल्ली जा रही, बुद्धि कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी नहीं, समेट के बस, समेट लिया बस, एक मैं और एक तू, एक बाबा और एक मैं, तीसरा कुछ भी नहीं। भले लोग हजार से इधर से कान खींचे, इधर से नाक खींचे, इधर से बाल खींचे, खींचने दो, क्योंकि बाबा कहा करते थे 25 पैसे का मटका, उन दिनों 25 पैसे का मटका मिलता था, 25 पैसे का मटका लेने जाते हो, साबुत देखते हो ना, टूटे को तो कोई हाथ लगाता नहीं है, टूटे को कोई हाथ लगाता, टूटा दिखाई दे रहा, क्रैक दिखाई दे रहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर उसको साबुत वाले को देखते इधर से देखते, फिर उसके बाद कान में आवाज सुनते, कान में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब कहीं से थोड़ी हवा कहीं से लीक करती हो, कुछ छेक हो तो आवाज नहीं आएगी ना कान में, तो तुम मटका खरीदते हो, इतना खरीदते हो, मैं तुम्हें राजा बना रहा हूँ, राजा बनाने के लिए बजा के नहीं देखूंगा, है ना, मैं क्या सब बजा बजा के देखेंगे, मैं राजाओं को चुन रहा हूँ, 25 पैसे का मटका तुम इतना देखभाल से लेते हो तो तुम्हारा तो बहुत अच्छे से बजा के देखा जाएगा, सब बजा के देखेंगे, है ना, नहीं बजा के देखेंगे, फिर सुन के भी देखेंगे, है ना, कि पहले अंदर अंदर तो नहीं रो रहा, अंदर से तो नहीं रो रहा है, खाली बाहर बाहर से रो रहा है कि अंदर से भी रो रहा है, नहीं तो चेक करके देखेंगे ना, तो इतना हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना? तो सहन करने की शक्ति, फिर इसलिए सहन करने की शक्ति आ गया, कुछ मर्जी कर लो, मीरा ने जहर पी लिया, सांप भेज दिया उसको भी गले, कुछ भी किया, मतलब कुछ उसको कुछ नहीं हुआ, है ना, सहन से सामना करने की शक्ति आ गई, कुछ मर्जी हो जाए, समाने की शक्ति आ गई, फैलाने की नहीं, कुछ मेरे को इतनी थोड़ी सी बात हो गई, मैं 10 लोगों को कहता फिरूं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया, सहयोग करना, फिर भी सबके साथ सहयोग करके रहना, जिसने जो करना है कर लो, मुझे सबसे मिलजुल के रहना, सहयोग करना, सबकी मदद है, मेरे तो भाई बहन है, ये जो बाबा का घर है ना, बाबा घर है ना, ये मधुबन को हम हमेशा कहते हैं बैर का धोबी घाट है, बैर का धोबी घाट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ रहते हैं ना, 1000-1200 लोग रहते हैं हम मधुबन में ना, सभी मधुबन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल ऊपर का और नीचे का हॉस्पिटल, शांतिवन, संगम भवन, म्यूजियम, हम सब जितने 1200 समर्पित भाई बहने रहते हैं, हमारे पिछले जन्मों के सब हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं आपस में, पिछले जन्मों के सबके साथ हमने क्या क्या पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, किनके साथ हमने क्या किया, कभी किसी जन्म में क्या किया हो, किसी के जन्म क्या किया हो, वो सारे के सारे चीजें अभी निकल रही हैं, सारे के सारे फाइलें खुल रही हैं। एक और नियम है कि बिना खुले फाइल डिलीट नहीं होती है, फोन में तो होता है ना सारा डिलीट ऑल, इसमें डिलीट ऑल नहीं होता है, सुबह एक दिन अमृत वेला पावरफुल योग कर लिया, सारे विकार विनाश हो गए, पावन से तो प्रधान रंगे ऊपर उड़ गए, ऐसा नहीं है, एक एक फाइल खुलेगी, एक एक SMS खुलेगा, उसे पढ़ो फिर डिलीट करो, फिर पढ़ो फिर डिलीट करो, फिर पढ़ो फिर डिलीट करो, फिर पढ़ो फिर डिलीट करो, एक एक चीज डिलीट होती है, वो फाइल हमारे सामने आती है, खुलती है, अगर हम बाबा की याद में टिके हुए हैं तो उस फाइल की मैं फंसते नहीं है, उस SMS में क्या मैसेज देखा उस फंसते नहीं, उस फिल्म में क्या सीन दिखाया वो फंसते नहीं, और बाबा की याद में उसको डिलीट कर देते, तो कभी SMS खोलते खोलते ही हम SMS खोलते ना पुराने वाला, फिर उस भावना में खो जाते हैं, तो वो खराब, वो फिर उसी में फंस गए, उसे पढ़ो देखो किंतु डिलीट कर दो, बटन डिलीट पे रहे, डिलीट खत्म, है ना, साक्षी भाव में होकर बाबा की याद में उसको डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, तो इस तरह से सातों गुण हमारे जितना बेसिकली क्या है, विक्रम राजयोग बेसिकली क्या है, राजयोग क्या है, हमारे अंदर सारी फाइलें हैं, हमारे अंदर सारी फाइलें, सारी फाइलें माना हमने सत्यों की फाइल भी है हमारे अंदर आत्मा में और ब्रेन में भी, इसमें हार्ड कॉपी है, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है, वो सारी फाइलें हमारे अंदर है, सत्यों की फाइल भी है, पहले जन्म की फाइल, दूसरे जन्म की फाइल, तीसरे जन्म की फाइल, सारी फाइलें हैं, संगम की पिछले संगम की भी फाइल है, जब फरिश्ता बने थे वो फाइल भी हमारे अंदर ही है, परमधाम की फाइल भी, परमधाम में कैसे थे वो फाइल भी हमारे अंदर है, विनाश हुआ था वो फाइल भी हमारे अंदर है, द्वापर में कैसे गिरे थे वो फाइल भी हमारे अंदर है, द्वापर के 22वें जन्म की, 23वें जन्म, 24वें, हर जन्म की फाइल हमारे अंदर है। अब हमको क्या करने का है, हमको योग के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी में पहुंचेंगे तो वो फाइल्स खुल जाएगी और खुल के वो हमें दिखाई देगी और वो फिर डिलीट कर लेगी। हमको बाबा ने आज भी मुझे में था, हमें सेल्फ को रियलाइज करना है, हमें बाहर से फाइल नहीं डालनी है, विजुलाइज नहीं करना है। विजुलाइज माना परम धाम ऐसा है, बिंदु एक बार दिखाया चित्र में बिंदु और ऊपर में लाल लाल रंग का है, ऐसा सूक्ष्म वतन ऐसा है, ऐसा नहीं है। सुखधाम ऐसा है, वहां पे ऐसे ऐसे एक महल है 3 मंजिल का, और वहां पे ऐसे वो रानी है, लक्ष्मी नारायण जा रहे हैं, पीछे उसका कपड़ा पकड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सत्युग, ऐसा नहीं है। ये तो पिक्चर बनाने वाले ने फोटो बनाई है। बाबा कहता वहां की तो फोटो आप निकाल ही नहीं सकते हो, ना सत्युग की फोटो निकाल सकते हो, ना लक्ष्मी नारायण का तुम रियल चित्र बना सकते हो, ना कृष्ण का चित्र बना सकते हो, ना तुम सत्य सूक्ष्म वतन का परम धाम का चित्र बना ही नहीं सकते हो। जो रियल है उसको ओपन करना है फाइल को, रियल को रियलाइजेशन करना ही योग है। मेडिटेशन जो है वो क्या है, रियल को रियलाइज करना है, ना विजुलाइज करना है, ना इमेजिनेशन करना। मैं इमेजिन करूं मेरे यहाँ बिंदु चमक रहा है, फिर वहां बिंदु से लाइट चारों तरफ फैल रही है, और फिर उसके परम धाम से शिव बाबा वहां से है, वहां से लाइट मेरे अंदर आ रही, इमेजिन नहीं करना है। रियल को जितना आप इसमें टिकते जाओगे, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, फील करो, दोनों ब्रिटों के मध्य है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस ब्रेन, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, और यहाँ पर आत्मा हाइपोथैलेमस के मध्य बैठी है। अब उसको अनुभव करना, जैसे बिजली में तार को नहीं देख सकते, ऐसे इसको देख, इसको अनुभव करना। ना आत्मा को देखा जाता है, ना परमात्मा को देखा जाता है, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बिजली तार में बिजली जा रही है, इसको हम देख नहीं सकते, हाँ इसमें जा रही, पंखा चल रहा है, इसका मतलब तार में बिजली जा रही, अनुभव हो रही है मेरे को, लाइट जल रही है इसलिए अनुभव हो रही है। उसको फील करना कि मैं आत्मा हूं और ना मैटर नहीं हूं, मैटर मतलब पांचों तत्वों से परे हूं, शरीर से बिल्कुल परे हूं, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, और वो एनर्जी है, और वो उससे ये मैसेज जा रहा है, नॉलेज जा रहा है सारे इसमें बॉडी में, एक सेल्स में, हर सेल पे मैसेज उतरा है मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु से तारा से सितारे के समान यहां चमक रही हूं, और उससे ये एनर्जी जा रही, मैसेज जा रहा सारी सेल्स में, मैं दे रही, मैं आत्मा हूं, सारी सेल्स में रोम रोम में मैसेज गया ये, और मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा शिव की संतान, पर जो परम धाम में रहता है। भगवान बाबा कितने दूर है हमसे, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है, और मेरे संबंध उसके साथ है, सर्व संबंध, माँ का संबंध, माँ के रूप में उसने मुझे क्या दिया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी, जो एक सेकंड से भी कम समय मुझे सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंचा। बाबा माना बाप दादा की, सूक्ष्म वतन माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का 100% पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र संस्कार। जब मेरी बुद्धि, ये पवित्र बुद्धि, मेरे पास दोनों बुद्धि है, दिव्य बुद्धि भी है, आसुरी बुद्धि भी है, ब्राह्मणों के पास दोनों बुद्धि होती है, हमें हमें दिव्य बुद्धि को यूज करना है, हमें आसुरी बुद्धि को यूज नहीं करना है, राइट। जो बाबा ने ज्ञान वाली बुद्धि दी है ABCD, जो आज जो बाबा ने मुरली में बताया, वो बुद्धि को यूज करना है, उसको चलाना है, वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, और उसी की याद में, उस सुन समझते हुए खाना है, उसी समझ में रहकर के हर कर्म करना है। तो ये जब अंदर से हम गहरा से अनुभव करेंगे, तो हमारे अंदर वो, हमारी वो स्थिति, वो जो ना हमारे अंदर वो, ये जो बाबा ने जो कहा ना, तो हम क्या, हम अपना जैसे पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि में ना पवित्र बुद्धि, हम वो बुद्धि के साथ, और उसमें बटन दबाया, हमने पवित्र संकल्प किया कि मुझे बाबा की गोद में जाना, बटन दबाया, संकल्प रूपी बटन दबाया, एकदम एक सेकंड से भी कम समय में हम कहां पहुंच गए, बाबा की गोद। बाबा की गोद माना बाप दादा की पवित्र बुद्धि, 100% पवित्र बुद्धि में पहुंच गए, 100% पवित्र संकल्पों मन में पहुंच गए, 100% पवित्र संस्कारों में पहुंच गए। अब मेरे संस्कार तो ठीक नहीं है, मेरे तो पवित्र है, मेरी तो मन में खाली संकल्प एक पवित्र किया अभी, बाकी तो पवित्र संकल्प है। तो जब मैं बाबा के सामने जाता हूँ, बाबा के पास जाता हूँ, ऐसा फील होता है कि हमारी बाबा से बातचीत होनी शुरू हो गई, तो मेरे संकल्प बाबा से मैच होने लगते हैं, माने जो मैं संकल्प करता हूँ बाबा को पहुंचता है, बाबा का संकल्प मेरे को पहुंचता है। इसे कहते हैं संकल्पों द्वारा बातचीत करना। ठीक है, हाँ, वो अपने आप वही संकल्प। अभी कई बार ब्राह्मणों को बाबा वहां नजर नहीं आता है। 90% ब्राह्मणों को बाबा नजर नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास आके सब बातें क्वेश्चन पूछते हैं, टेलीफोन पे पूछते हैं कि जो कहते हैं बाबा की गोद में जाते हैं, बाबा वहां बैठा होता है, बाबा की हमें तो बाबा नजर तो नहीं, हाँ हमारी बाबा से बातचीत होती है, बाबा नजर तो नहीं आते किंतु बाबा से हमारे संकल्प अंदर अंदर चलते हैं। बाबा का संकल्प, आप संकल्प करते हो बाबा को टच होता है, आपके अंदर संकल्प आता है, फिर बाबा आप टच करते हो बाबा को संकल्प पहुंचता है, बाबा का टच आपको होता है अंदर अंदर। और अपने आप जो है, अपने आप जवाब आ रहा है, ये बाबा से आपकी बुद्धि ट्यून हो गई, जैसे फ्रीक्वेंसी ट्यून हो गई ना, इसे कहते हैं बाबा से हमारा, हम सूक्ष्म वतन में है, हमारा मन और बुद्धि बाबा के साथ कनेक्शन में आ गया। ठीक है, तो जितना जितना हमारा पवित्र मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है, और ज्यादा पवित्र होती जाए, और ज्यादा पवित्र होती जाएगी, अब हमें बाद में फील होने लगेगा कि बाबा की गोद में है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा कह रहा है दिल में दर्द है, अच्छा बच्चे पिए दो तुम, दिल ठीक हो गया बच्चे, बच्चे सिर, बाबा मेरे को सिर में दर्द रहता है, पता नहीं बहुत भारी भारी रहता है, अच्छा बच्चे बस ऐसे ऐसे करना, ये बात मत सोचा करो, बाबा वो मुझे ना बहुत तंग करता है, बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब है उसके साथ, तुमने बहुत उसको दुख दिया हुआ ना पिछले जन्म में, इस जन्म में, इसलिए तुमको बस तुम बाबा की याद में रहा करो, उसको जवाब मत दिया करो वापस, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे बाबा फिर आपको आपको चिंता से मुक्त कर देता, राइट। फिर आपको फील होना शुरू होगा बाबा का हाथ फील होगा मस्तक पे, छाती पे, जहां पर भी, मतलब आपको कुछ बाबा मेरे कंधा ना बचकर बहुत जम हो गया है ना, हाथ ऊपर उठता ही नहीं है ना, बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे इसमें थोड़ा सा ऐसे कर ले, ऐसे परिवार बच्चे इसको थोड़ा एक्सरसाइज किया करो ना, बाबा सारी बातें बता देता है। पर वो जितना आप बाबा से, फिर बाबा की दी हुई डायरेक्शन पे चलोगे, दिव्य बुद्धि, बाबा की दिव्य बुद्धि, सारा हर टाइम वो बुद्धि यूज करो, दुनियावी बुद्धि नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करो, मनुष्य मत इस्तेमाल नहीं करो, किताबों में पढ़ी बातें इस्तेमाल मत करो, किसी ने बताया, रामदेव श्यामदेव ने बताया, वो नहीं करो, ठीक है, किसी और ने बताया, वो नहीं इस्तेमाल कर, जो बाबा ने कहा ना, बाबा की बुद्धि इस्तेमाल करो, बाबा ने जो बताया, फिर बाबा की ये जो मुरली है ना, मुरली 100% पॉजिटिव टीम है, ये 100% मन को पॉजिटिव बनाने वाली है, इसमें पॉजिटिव स्मृतियां हैं, सत्य स्मृतियां हैं, सत्य वृत्ति है, सत्य भावना, सत्य संकल्प है, तो जितना इसको पॉजिटिव बनाते जाएंगे, जितना इसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रियलाइज करेंगे, मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे, उतना हमारा मन पवित्र होता जाएगा। ये मुरली को हमें जीना है, ये मुरली बाबा की श्रीमत है, और इस मुरली को हमें बार 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 रिवाइज करो और रियलाइज करो। बाबा का महावाक्य, मुरली का हर महावाक्य में तीन बातें हैं, हर मुरली के हर महावाक्य में वो रहस्य युक्त है, गोपनीय है, उसमें खाली जो लिखा है सामने उसका मतलब वो नहीं है, रहस्य है, गोपनीय है, और क्या है, रहस्य युक्त गोपनीय और बाबा ने कहा एक महावाक्य लाखों रुपए का है, ठीक है, अमूल्य है। कुछ सिंपल सा महावाक्य लगता है आपको, सिंपल सी लाइन है, तो उसमें भी आप जब पढ़ते हैं ना, हम तो देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, सुबह सुबह एक बार पढ़ते हैं, 4:45 बजे पढ़ते हैं, फिर मुरली क्लास में सुनते हैं, फिर उसके बाद वॉकिंग करते समय पढ़ते हैं, उस पे एक मनन चिंतन, एक लाइन पे करते हैं मनन चिंतन, फिर दिन में जैसा मौका मिलता है, हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, फिर कार में बैठे होते हैं, फिर निकाल लेते हैं मुरली, जहां मौका लिखा ना, इसमें तो हमेशा कहता था लव लेटर की तरह से इसको दिल के पास रखते हैं ना, तो लव लेटर कैसे पढ़ते हैं, देखा अभी कोई नहीं, निकाला, पढ़ा, एक लाइन पढ़ी, मुस्कुराया, जेब में रखा, फिर जैसे थोड़ी देर वही सोचते रहे, बाबा ने ये कहा था, बाबा ने आज ये बच्चे तुम्हें ऐसे करना, बच्चे तुम्हें निरंतर तुम्हें ऐसे रहता है, बच्चे तुम्हें ऐसे रहता है, बच्चे तुम ऐसे है, तो वो फिर बार बार चिंतन चलता रहे, उस मनन चिंतन चला, मंथन चला, सिमरण, फिर थोड़ी देर में फिर मौका मिला, फिर निकाल के देख लिया, नहीं ये तो समझ नहीं आया, फिर देख लिया, फिर दोबारा से रख लिया, है ना, ऐसे मतलब लगन होनी चाहिए, लगन। आपको पता है एक बार बाबा ने एक बार कहा था, बाबा की मुरली में था कि जो अष्टरतन 108 रतन 16108 बनते कैसे बनते, जिनको श्वासों श्वास बाबा की याद रहती है, बाबा की महावाक्यों की मुरली की याद रहती है, वो अष्टरतन बनते हैं, वो बाप समान है। और एक दिन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने फिर चिंतन किया इसके ऊपर कि हम एक दिन में 16,000 बार सांस लेते हैं, 14 बार दिन में 16 घंटा का निकालो ना, 16 को 14 से गुना करो, और रात को सोते समय 10 मिनट 10 सांस एक मिनट में लेते हैं, तो सारा अगर काउंट करो तो हम लगभग 16,000 सांस एक मिनट में एक दिन में लेते हैं 24 घंटे में। तो श्वासों श्वास जिनको बाबा और मुरली याद रहता है वो अष्टरतन बनते हैं। जैसे हमारी दादियों को देख लो आप, बड़ी दादी को देख लो, अभी जानकी दादी को देख लो, गुलजार दादी को देख लो, उनके हर श्वास में मुरली समाई हुई है। अब देखो दादी अभी 100 साल की हो गई है, शाम को जब क्लास में आती है तो क्लास में वो सारी मुरली, उनको जैसे मुरली की सारा वरदान सारा स्लोगन सारा वो बीच बीच में कहां का एक एक पॉइंट जूस निकाल के क्लास में सुना देती है। जब देखो तो उनके मन से मुरली निकलती है, मुख से मुरली निकलती रहती है, हमेशा मुरली बजती रहती है हमेशा। तो श्वासों श्वास जिनको मुरली याद रहती, मुरली बाबा ने क्या कहा उनके कर्म कर्म में आता रहता है, वो अष्टरतन बनते हैं। दादी गुलजार देखो पहली बार जब बाबा आए ना, पिछली बार 2014 में जब बाबा आए तो बाबा ने कहा बच्चों के दिल में कौन, मेरा बाबा है ना, और बाबा के दिल में कौन। अब दादी जब से जब क्लास कराएगी, जब गुलजार क्लास कराएगी, जब क्लास कराएगी बच्चों के दिल में कौन है ना, कितने प्यार से बोलती, कितने प्यार से बोलती है, बाबा के दिल में कौन, फिर थोड़ी देर फिर बच्चों के दिल में कौन है ना, तो कितना प्यारा लगता है ना, बच्चे जैसे बच्चे सच में जैसे इस तरह की भावना से दादी बोलती है। तो ये जो है ये फीलिंग श्वासों श्वास अगर हमें चलना है, अगर बाबा की मुरली याद रहे, और जिनको 108 की माला में आना वो कितनी बार उनको करनी चाहिए मुरली, कितनी बार मुरली नहीं, जो जिनको 108 की माला में आना है उनको दिन में कम से कम 108 बार मुरली याद होनी चाहिए, 108 बार मुरली बजनी चाहिए उनके अंदर। 16 घंटा हम जागते हैं ना लगभग, तो पता एक घंटे में लगभग 6 बार तो कम से कम होनी चाहिए, 10 मिनट में मतलब एक बार मुरली याद करो, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज 6 घंटे मतलब एक घंटे में 6 बार ना, तो 16 से 96 ना, तो 100 बार हो गया ना, मतलब 8 रतन तो हो गए, 100 बाकी रह गए ना, 100 मन कर सकते हैं, तो सोफी माला में आ जाओगे, मुश्किल नहीं है। अभी आज शुरू कर दो है ना, आज शुरू कर दो, देखो 108 की माला में आ जाओगे, क्या मुश्किल है क्या। देखो मुरली मिलती है, रोज पढ़ते हैं सुनते हैं है ना, उसको क्या क्या करना है, निकालो देखो, निकालो देखो, धीरे धीरे पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं ना, वो रस्सी लाते जाते रस्सी पे निशान, पत्थर भी जब बदल सकता तो हम क्यों नहीं बदल सकते। कालिदास जैसा बदल सकता है, जिस पेड़ जिस डाली पे बैठा उसको काट रहा है ना, उतना मूर्ख भी बदल सकता है अपने आप को, तो हम क्यों नहीं बदल सकते। कालिदास तो हम अच्छे ही हैं, तो इतनी इतना कुछ, और कुछ के लिए साधन क्या है, सिर्फ मुरली है और कुछ नहीं है, मुरली साधन है। और जिसको 16108 की माला में आना है, मतलब राजा रानी बनना है, राजा रानी में हम हाथ उठाते हैं, उसको एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है, हर पहर में एक बार मुरली कम से कम पढ़े, सारी मुरली नहीं पढ़ो बेशक, कम से कम मुरली का पॉइंट तो याद हो, वरदान तो रिवाइज करो, स्लोगन तो रिवाइज करो, बाबा ने मीठे बच्चे क्या क्या कहा वो तो याद आवे, अपने आप नहीं तो निकाल के पढ़ लो, उसको मनन चिंतन मंथन करो, सिमरण करो। और जिसको 9 लाख में आना हो, पहले जन्म में आना हो, कृष्ण के 7 वाले जन्म में आना, उसको रोज एक बार क्लास में जाके मुरली सुननी चाहिए 7 बजे, ठीक है। बाबा ने कहा था इसमें जो जितने घंटे लेट उतने जन्म लेट हो जाता है, ये पढ़ के देख लेना, मैं ऐसे नहीं सुना रहा हूँ, मुरली में है, बाबा की मुरली में है, सुनीता बहन ठीक बात है, जो मुरली में 7 के कई बार माताएं कहती है हमने 8 बजे जाएंगे मुरली सुनने, हम तो हमारे क्या बच्चे स्कूल सुबह सुबह स्कूल में जाते ना, अभी पति घर में जब वहाँ स्कूल में वहाँ वापिस चलाए फिर हम सेंटर पे जाएंगे, 2 घंटे लेट हो गए ना, कई माताएं 11 बजे सेंटर पे जाती, 4 घंटे लेट हो गए, तो 4 जन्म लेट हो गए सर, ठीक है, कितने जन्म लेट हो गए, 4 जन्म लेट हो गए, सत्युग में 4 जन्म लेट होंगे, हर्जा तो है नहीं, वैसे सत्युग में तो आएंगे नहीं, श्री कृष्ण देखने को नहीं मिलेंगे, वो पहले आ जाएंगे सत्युग, उसमें पहले ही आ जाएंगे। देखो मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, अपनी अपनी आप कहते अभी बड़ाई, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो अभी मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं एमडी कर रहा था, तो एमडी कर रहा था हमारा, तब दिल्ली में थे हम ना, तभी दिल्ली में मैंने एमडी की, हम कनॉट प्लेस में रहते थे, वहां पर लेडी हार्डिंग में रहते थे, तो वहां पर हमारे से पहाड़गंज हमारे सेंटर से हमारे वहां जहां हम हॉस्पिटल में रहते थे वहां से हमारा 2.5 किलोमीटर दूर सेंटर था। हमारा बेटा उसमें 3 साल का था, उसको सामने स्कूल था, हमारे हमारे हॉस्पिटल के सामने स्कूल था। तो हम क्या करते थे, सुबह सुबह 4 बजे उठते थे, 4:15 उठते थे हम दोनों, मतलब पहले अमृत वेला योग करते थे, योग करके दोनों मिल के मतलब फिर वो अपना जल्दी से मतलब वो नहा लिए, फिर मैं नहा लिया, नहा लिया अपना वो सब्जी काटना शुरू करते थे हम लोग, कुछ मतलब जो मदद वो कर सकता मैं कर सकता हूँ, हम दोनों मिलकर मदद करके सर की खाना बना लेते थे, सब्जी वब्जी बना ली, चपाती हो गई। अच्छा फिर उसके बाद हम बच्चे को स्कूल छोड़, 6:30 स्कूल छोड़ते थे, स्कूल छोड़ के उसको फिर सेंटर पे जाते थे, सेंटर पे जाके और फिर वहां से वापस आते थे, आके फिर खाना खाके तुरंत 8:30 मुझे अस्पताल पहुंचना होता था, 8:25 पे, तो 8:25 में मैं अस्पताल पहुंच जाता था। और हमने ये दिनचर्या कभी मिस नहीं की, कभी भी, मतलब जिसने मेरा एग्जाम था ना, एमडी का एग्जाम था, उस दिन भी मैं मुरली सुनने गया, मेरा दूर सेंटर था तो मैं मुरली सुनने गया, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था, थ्योरी एग्जाम था, उस दिन भी मैं मुरली सुनने गया। तो अगर हम बाप को प्रायोरिटी देते हैं तो बाबा भी हमको प्रायोरिटी देता है। नियम बनाना होता है कि मुझे आत्मा का ये अमृत वेला आत्मा का स्नान है, स्नान अच्छे से करना चाहिए, रगड़ रगड़ के करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि अच्छे से कर लिया बस पानी डाल लिया स्नान हो गए, अच्छे से करते ना स्नान, तो अच्छे से अमृत वेला सारी मन बुद्धि आत्मा के तीन अंग है, तीन मतलब पार्ट है, मन बुद्धि संस्कार, तो मन बुद्धि तीनों को अच्छे से धोना चाहिए, है ना, अमृत वेले बुद्धि में से गंदगी निकल जाए, मन में से गंदगी निकल जाए, है ना, संस्कारों में से गंदगी निकल जाए, इतना पावरफुल अच्छे से नहाना चाहिए। ब्राह्मण कभी स्नान के बगैर खाना नहीं खाते ना, तो बिना अमृत वेले के तो ब्राह्मण रह ही नहीं सकता है, सच्चा ब्राह्मण है ना, एक्टिंग नहीं करनी होती स्नान की, है ना, अच्छे से नहाया जाता है साबुन लगा के, है ना, मतलब ज्ञान युक्त आपका ज्ञान माना साबुन, ज्ञान युक्त अमृत वेला होना चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, विचार सागर मंथन करते हुए मेरा अमृत वेला होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बैठ गए खेत में जाओ तो खेत में जाओ ना, फिर सत्युग में कैसे जाओ, खेत में चले जाओ, बाबा ये थोड़ी ना कहते खेत में मत जाओ, पर बाबा कहते मुरली तो सुनो। अच्छा बचो एक मिनट, तो फिर अमृत वेला शाम को नहीं सुना, फिर शाम को सुनेंगे 12 घंटा लेट, 12 जन्म लेट आएंगे। देखो ये तो प्रायोरिटी की बात है, मैं दिल्ली में मैं 5 हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर था, 5 हॉस्पिटल मुझे एज ए कंसल्टेंट था, रोज मुझे 7 बजे राउंड लेने जाना होता, 7 बजे सुबह 7 बजे राउंड लेने जाना होता था हॉस्पिटल्स में, पेशेंट दाखिल होते ना हॉस्पिटल में, तो 7 बजे राउंड, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या करता था, मैं हमेशा पहले ना 1 घंटा जाकर के पहले मुरली जाता था, मुरली जाके जल्दी से वो करके और फिर मैं नाश्ता करके फिर राउंड लेता था, और राउंड लेने के बाद फिर मुझे तीन जगह बैठना होता, तीन हॉस्पिटल में मुझे बैठना होता था 2-2 घंटे पेशेंट देखने के लिए ना, चैम्बर होते ना वहां बैठना होता था, वहां पेशेंट की भीड़ लगी होती थी, और वो एक तो वहां से 20 किलोमीटर दूर था एक हॉस्पिटल जहां मुझे जाना होता, 20 किलोमीटर दूर था वहां से जहां मैं रहता था, तो मैं वहां पर भी जाता था, तो वहां भी, और मैंने फिर देखा कि जिस दिन मैं सेंटर पे जाता था, शुरू की बात है जब मैं ज्ञान में नया चला, जिस दिन सेंटर पे 7 से 8 चला गया, बड़ी शांति से सारे पेशेंट देख पाता था, वो मरीजों से बहुत अच्छे से बात करना, खुश होकर सब लोग ठीक होते खुश होते थे। और जिस दिन मैं सेंटर में मिस हो गया सुबह, शुरू की बात है, जब ज्ञान की बात 29 साल पहले की बात था, तो जब मैं कहीं मिस हो जाता था कहीं पर, तो मिस होने के बाद जब मिस होता था तो सारा दिन मरीज कुछ बहुत सारी बातें पूछते हैं ना, एक मरीज का 2 रिश्तेदार होते हैं, डॉक्टर साहब ये करें ये खाऊं नहीं, डॉक्टर साहब ठंडा खाऊं गर्म खाऊं, ऐसे करूं, मैं कहता भाई तुम, मैं पेशेंट को नहीं बोलता, मैं कहता तुम सब कुछ खाने मेरा दिमाग नहीं खाए, ऐसे नहीं कर, कितने मरीज खड़े हैं रहा था मुंह से तक न बोलते, कभी कभी मजाक में बोल देते तो कहते डॉक्टर साहब क्या खाएं, मैं कहता सब कुछ खाना, किसका दिमाग मत खाना, दिमाग खाना सबसे, अब तुम कितना भी तुम कहते तुम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो, डॉक्टर साहब कहते हम तो वेजिटेरियन है, इसका दिमाग तो नहीं खाते, दिमाग खाना नॉन वेजिटेरियन होता है, दिमाग खाओ तो नॉन वेज है क्या वेजिटेरियन है, नॉन वेज है ना, कभी किसी का दिमाग नहीं खाना चाहिए, किसी से ज्यादा बुलवाना, किसी से ज्यादा तंग करना, किसी को ज्यादा बहस करना कभी नहीं करना, करना चाहिए, सबसे बड़ा पाप है नहीं? तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब मैंने देखा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, मैंने एक घंटा बाबा की मुरली सुनी तो सारा दिन अंदर बहुत शांति से काम होगा, प्यार से काम, खुशी से काम, जरा भी जल्दी बाजी फील नहीं होगी। और मरीज बाद में तो ऐसे हो जाते हैं, मैं आपको पता, मरीज तो वैसे हो जाते हैं कि वो कहीं का बेचारे ऐसे बाहर कंसल्टेशन बाहर बैठ के बैठ जाएंगे, कंसल्टेशन फीस 100 रुपए पे कर देंगे, उस समय 100 रुपए 150 रुपए फीस होती थी, अभी तो 1000 रुपए फीस हो गई डॉक्टर्स की, तो पहले 100-250 रुपए, उस समय 250 रुपए फीस थी एक पेशेंट की ना एस्कॉर्ट्स में, वो दूसरी जगह 100 रुपया थी, एक जगह 150 रुपया थी, तो फीस पे कर दी। अच्छा फीस पे कर, मैंने कहा भाई साहब अच्छा आ गया पेशेंट, वहां फीस जमा करा दिया, अंदर आ गया, अंदर आ गया, मैंने कहा बोलो क्या तकलीफ, कहते डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ नहीं, मैंने कहा फिर मेरे पास क्यों आए, फीस पे जमा कराई, कहते डॉक्टर साहब बस आपके दर्शन करने आया था। मैंने कहा अच्छा तुम दर्शन हो गए ना, अभी तुम जाओ 100 रुपए वापस ले जाओ। तो मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर आप बहुत शांति से रहते हो ना तो आप सिर्फ लोग आपके पास आकर के आपसे एक मिनट मिलके ना सिर्फ देख के चले खुश हो जाते हैं। आपको पुराना मरीज डॉक्टर साहब बहुत दिन से मैं मिला नहीं ना आपसे, तो मैंने कहा एक बार डॉक्टर साहब को देखा हूँ, 100 रुपए जमा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा 100 रुपए जमा करा दो, मैं 100 रुपए जमा करा दी, और कितनी देर से बैठा, 2 घंटे से बैठा था लाइन में, अब 2 घंटे से वो बैठा है, 100 रुपए जमा करा के फिर वो मिल के गया, ठीक हो तबीयत, ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, बस अभी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो पुरानी बातें बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको अगर आप बाबा के बच्चे सही ढंग से नियमों पर चलते हो तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, ठीक है। अमृत वेला और मुरली कभी मिस मत करो, कैसे भी चोरी छिपे भी जाओ, कैसे भी जाओ, जाओ अपने काम में, यही तो है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को साथ मिलाने की शक्ति, और क्या है कि बाबा से मिलने जाना है, कैसे भी करके जाऊं ना, पानी के बहाने जाऊं ना, पानी लेने जाना है, मटका बाहर रखा और सेंटर में मुरली सुनी, फिर पानी भर के घर ले गई वापस, नहीं सुना, नहीं मतलब ये तो बाबा की, हम बाबा की नजर कैसे हमारे ऊपर है वो करने का, ठीक है। तो ये जो बुद्धि है हमारी, अब ये समझो, ये समझ लो सभी कि बुद्धि में जो ना, ये जो हमारा दिल है ना, दिल में अगर देहदारी कोई बैठा है, अपनी देह बैठी है, कोई देहदारी बैठा है, देह का संबंधी बैठा है, देह का स्वभाव संस्कार बैठा है, देह का सब देह का स्वभाव है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह का संस्कार आदत है अलग से, देह की आदत है अलबेलापन, चिंता भय, दूसरे में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना, जल्दीबाजी करना, इच्छा देश करना, ये जो है ये देह की आदत है, इससे बचना है, ये अंदर बैठी है। और देह के पदार्थ, घर की चीजें, अपने कपड़े, अपनी प्राइवेट चीजें, ये अंदर बुद्धि में, दिल में बैठी है, ये बैठी है, इससे ये जो है सारे विक्रम पैदा हो रहे हैं, इससे सारा कनेक्शन है। दिल में से निकाल दो इनको, बाबा कहता है देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से निकालो, दिल से निकालो, तब अपने को आत्मा समझो, तब अपने को आत्मा समझ पाएंगे, तब हमारा विवेक ईश्वरीय बनेगा, ईश्वरीय माना ये निकलेगा तो बाबा अंदर दिल में आएगा, सच्ची दिल माना जिस दिल में सिर्फ ना देह है, ना देह के संबंध स्वभाव, ना देह के संस्कार है, ना देह के पदार्थ है, जिस दिल में सिर्फ ABCD है, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और संसार में इस नाटक में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, कोई चिंता भय नहीं है, उस दिल में आके बाबा बैठ जाता है, उस दिल में दिलाराम आके बैठ गया, ज्ञान का सागर, पवित्रता, आज के मुरली थे ना, बाबा कौन है, बाबा की क्या प्रॉपर्टी है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, जब वो दिल में आ गया तो दिल में आके क्या करता है, वो सारे कचरा निकाल देता है, और तब हमारा विवेक ईश्वरीय बन गया, विवेक माना प्रज्ञा शक्ति ईश्वरीय बन गई, अब हमको समझ आ गया ठीक क्या है, गलत क्या है, अब हमको ठीक गलत का समझ में आ गया, तब हमारी तब अब हम ठीक करेंगे, विवेक हमारा काम करेगा, फिर निर्णय ठीक होगा, निर्णय ठीक होगा, चित्त हमारा ठीक हो जाएगा, चित्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड शांत होगा, शांत और दिल में आनंद है तो इसमें हमारे चित्त में भी आनंद आ जाएगा। जब चित्त में आनंद आ जाएगा तो हमारी अब रात में नींद गहरी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता, जैसे ही हम सोते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, सपने आने शुरू हो जाते हैं, तो दिन में नहीं कर पाए रात में करना शुरू कर देते हैं, नींद कच्ची हो जाती है, कच्ची होते सुबह सुबह अमृत नींद आती है, इसलिए उठते हैं, उठ के फिर सो जाते हैं। संकल्प चलते ही नहीं, संकल्प की स्पीड नहीं होती। बाबा ने कहा था कि कौन सी संदेह की मुरली थी, संदेह की मुरली याद है, इतवार की मुरली थी ना जो भी, तो बाबा ने कहा था उसमें हम क्या करते हैं, उड़ते हैं विमान में, विमान मिलेगा ना अगले जन्म में, अगले जन्म में विमान मिलेगा, तो विमान क्या है, विमान में ईंधन नहीं होता शुद्ध संकल्प वाला, तो थोड़ा उड़ा नीचे गिर जाता है, कभी वैध संकल्प पहाड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है, तो वैध संकल्प और नेगेटिव संकल्प अंदर है तो विमान कैसे उड़ेगा। अभी वैध संकल्प और नेगेटिव संकल्प रूपी हमारे अंदर जब नहीं होगा तब विमान ऊपर उड़ेगा और तब अगले जन्म में हमको विमान मिलेगा, पुष्पक विमान मिलेगा ना, तो अभी हमारी बुद्धि रूपी विमान इतना शुद्ध होना चाहिए, तो तब हमारी, तब हमको नींद गहरी आएगी ना जब, तो हमें बाबा को टाइम दे दे, बाबा 3:30 उठा देना, बाबा एकदम 3:30 क्या 3:29 उठाता है, और उठते सुस्ती नहीं आएगी, उठ के एकदम से हम लोग अलर्ट होके मुंह धो के ब्रश करके बैठ जाएंगे, है ना, कपड़े भी वैसे तो कपड़े ड्रेस भी बदल लेनी चाहिए उठ के ना, ड्रेस बदल के बैठना चाहिए, वो रात भर ड्रेस नहीं, सुबह से एक बार ड्रेस बदल लो और फिर आराम से जैसे बाबा से मिलने जा रहे ना ऐसे करो ना, तो सोते हुए कपड़े से उठ के बाबा से मिलने जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने जाओ तो ऐसे जाओगे, उठे और मुंह ऐसे किया और जाके बैठ गए ऐसे, ऐसे नहीं ना, तो वो तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का ही बात है ना, उससे मिलने जा रहा था, उस भावना से बैठो और फिर बाबा के पास एबीसीडी को रिवाइज रियलाइज करते जाओ, अपने आप ऊपर पहुंचते जाओगे। ये दुनिया 4 संकल्पों तक की है, साकार वतन, इसमें 4 संकल्प, एबीसीडी हम कहते हैं, एबीसीडी, एबीसीडी, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, तो ये इस दुनिया में हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है, जो हुआ इस दुनिया में हुआ है, जो हो रहा है इस दुनिया में हो रहा है, और जो होने वाला है इस दुनिया में होने वाला है, ऊपर तो कुछ होने वाला है क्या, सूक्ष्म वतन में परिणाम में कुछ होने वाला नहीं है, तो ये जैसे हमने 4 संकल्प से कम हुए ना, 3 संकल्प हम सूक्ष्म वतन पहुंच गए, इसे ही शुद्ध मन कहते हैं, शुद्ध बुद्धि कहते हैं, और 2 संकल्प किए तो माना बाबा की गोद में पहुंच गए, मैं बाबा का बाबा मेरा, तो ए और बी रह गया खाली, सी माना सर्व संबंधों की अनुभूति करते करते खाली एक रह जाएगा, बाबा, बाबा ही मेरा सब संबंधी है, सर्व संबंधी है, बस सब कुछ रहा ही नहीं, बाबा की गोद में पहुंच गए, ये आनंद की स्थिति है। और जब बाबा की लव में लीन हो गए तो बाबा की याद में खो गए, अभी ये भी ना मैं आत्मा हूं, देह का बंधन को खत्म हो गया, खाली बाबा रह गया, तो तब हम परमधाम में पहुंच गए। परमधाम में कोई संकल्प नहीं होते, वो बीज रूप स्थिति है, परमधाम में पहुंचे अब हमारे विक्रम विनाश होना शुरू हो जाते हैं। विक्रम माना जो भी हमने काम क्रोध लोमो अहंकार की मेमोरीज हैं, यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो हमारी डिलीट होनी शुरू हो जाती है, वो डिलीट माना वो फाइलें जलने लगती हैं, वो केमिकल जो हमारी सेल्स में बना है ना, हमारी सेल्स में केमिकल बना हुआ है, वो हमारी जो मेमोरी वो केमिकल डिसमेंटल होने लगता है, डिसमेंटल माना टूटने लगता है ब्रेन की सेल्स में, और वो उसका वो खत्म होएगा, आप कितनी देर टिकते हो पर उस पर डिपेंड करता है, कितनी देर टिकते हो परमधाम में। परमधाम में वही टिक सकता है जिसका अमृत वेला इनाम है सारे दिन की दिनचर्या का, अगर मैंने आज की दिनचर्या बाबा की श्रीमत पे चला हूं एक्यूरेट, तो अमृत वेला मेरा पावरफुल होगा, नहीं तो आज मैंने जो गलती की ना, उठते ही सबसे पहले बाबा की वो गलती याद आएगी, अमृत वेला ऊपर पहुंच गया ना सूक्ष्म वतन में, वो गलती हमको नीचे खींच लाएगी, ऊपर नहीं जा पाएंगे। जो गलती मैंने आज की, मुझे मैंने कई बार मुझे अनुभव होता है कोई गलती करते हैं, जिससे बोल चाल में थोड़ा सा ऊंच नीच कर लिया, थोड़ा सा किसने कुछ कह दिया, हमने उसको थोड़ा सा कहता, बोलते नहीं मुख से नहीं बोलते, कुछ आंखों से ही ऐसा कुछ होता है, मन में फील हो जाता है, तो बाबा ऐसे लगता है कि बाबा बाबा वो बात याद आएगी, बाबा बच्चे तुमने कल ऐसा किया, तुमने उसको ऐसे देखा, तुमने आंख दिखाई, बाबा नहीं, बाबा मुझसे गलती हो, आज से नहीं करूंगा अंदर से, तो बाबा से बहुत 10 बार सॉरी कहेंगे, तब जाके बाबा कहता अच्छा भी आ जाओ, अच्छा अच्छा फिर गोदी में लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं, तब मतलब बाबा से इतना गहरा, जैसे एक छोटी छोटी गलती भी इससे पूरा दिन का अटेंशन रखोगे तो अमृत वेला पावरफुल होगा। उसके लिए एक नियम है, सोने के पहले एक लेटर लिखो बाबा को, सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या क्या गलती की, बाबा मुझसे गलती हुई, बाबा उसने मेरे को ऐसा बोला ना, मेरे को बहुत फील हुआ, वो मेरी ग्लानी कर रहा था, बार बार ग्लानी कर रही थी बार बार, तो मेरे को फील हो रहा था बाबा उसने मेरे को ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ बाबा, ऐसा हुआ बाबा, ऐसा हुआ बाबा, ऐसा। और इसके लिए भी क्या जरूरी है, दिल रूपी दर्पण स्वच्छ होना चाहिए पहले। हमारा दिल रूपी दर्पण ही गंदा है तो उसमें हम अपने मन रूपी चेहरे को देख नहीं सकते। ये चेहरा नहीं, मन रूपी चेहरा, मेरे मन में क्या है ना, कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा माना मन और दर्पण माना दिल। अगर दिल में मेरे देहधारी कोई अपनी देह है, देहधारी कोई मेरे मन में बसा, मेरे दिल में बसा हुआ है, देखे संबंध बसे हुए, देखे स्वभाव संस्कार बसे हुए, देखे पदार्थ बसे हुए, तो मुझे क्या लगता है, इसने गुस्सा किया ना, मैंने गुस्सा करके करना ही चाहता ना, तो बिगड़ जाता। अगर एक काम जल्दीबाजी कर रहा था, ये जल्दीबाजी नहीं करता तो काम होता ही नहीं। इसमें मैंने क्या गलत किया, कुछ गलत ही नहीं किया, तो अपनी गलती नजर नहीं आती है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता ना, दोष तो उसका था, मैंने थोड़ी ना गलत किया। अपनी गलती हम रियलाइज नहीं करते। जब दिल रूपी दर्पण स्वच्छ, इसमें बाबा होगा खाली दिल में, जब उस दिल में हम अपने अपने आप को देखेंगे, अपना आप संपूर्ण स्वरूप देखेंगे, तो मेरा ही संपूर्ण स्वरूप है, ये तो गलती है बाबा, ये गलती हुई बाबा, ये गलती हुई बाबा, ये गलती हुई बाबा, ये गलती। फिर साइन करते हैं, साइन करके नीचे फिर बाबा को 000 पे फैक्स कर देते हैं। बाबा का हॉटलाइन नंबर है ना 000000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और साथ में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 से गुणा कर दिया। तो बाबा आज बस, आज जो गलती हो गई बाबा को दिया, फाड़ के डस्टबिन में डाला, फिर चार्ट, याद का चार्ट पड़ा, सच्चा सच्चा चार्ट पड़ा, झूठा चार्ट नहीं, सच्चा चार्ट पड़ा। कितने मिनट मेरे को याद रही बाबा, 4 से 5 में मैंने सिर्फ 5 मिनट योग लगा ना, बाकी टाइम तो इधर उधर घूम रहा था, मन कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी नींद आ रही थी, 5 मिनट याद किया। 5 से 6 जब नहा रहा था तो उधर तो मेरी बुद्धि में कुछ आया नहीं है ना, बाबा आप याद ही नहीं आए। 6 से 7 जब मैं वॉकिंग करा था तब थोड़ा थोड़ा देर, 5 मिनट आप याद आए थे, बाकी टाइम तो कुछ याद ही नहीं आया। और ही बात आ रही थी बुद्धि में, वो एक्शन कॉन्शियस, वॉकिंग में कॉन्शियस हो गया था, फला व्यक्ति मिल गया उसमें, बातों में खो गया है ना। अच्छा 7 से 8 मुरली में फिर कितनी टेंशन रही मुरली में, बाबा बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनी, 8 से 9 फिर क्या नाश्ता करते समय बाबा की याद रही। ऐसे मतलब एक एक घंटे का देखते हुए चले जाओ, क्या का चार्ट बना, फिर मुरली पढ़ो। सोते समय तो मैं समझता पूरी मुरली पढ़ लेनी चाहिए मेरे को, तो सुबह सोते समय इतनी अच्छी लगती मुरली और मजा आता है। और मुरली सिर्फ 10 मिनट में पढ़ी जाए, 10 मिनट में 5 ही मिनट लगते हैं पूरी मुरली पढ़ने में। दिन में 10 बार 20 बार पढ़ी होती ना तो 5 ही मिनट में मुरली हो जाती है, दिखाई देती है मुरली में यही बातें, पहले रटी होती है ना, पर अंदर से याद आ जाता है, अच्छा लगता है। और फिर बाबा को याद करके बाबा गोद में सो जाओ। और हमारा जो बेड है ना वो गैरेज है, ये बॉडी को वहां पार्क करो, गैरेज में बॉडी पार्क की, और हमारा बेडरूम कहाँ है, सूक्ष्म वतन। और बेड कौन सा, सूक्ष्म, बाबा की गोद। तो बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में गए, बाबा की गोद में जाके सो गए। गैरेज में कभी नहीं सो जाओ, गैरेज में सोओगे तो बहुत मच्छर काटेंगे, मच्छर माना बहुत सारे सपने आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, तकलीफें होंगी ना। तो फिर आपको फिर एक्यूरेट आप कहीं पे उठो, और उठते ही ऐसे बढ़िया योग लगेगा, इतना बढ़िया योग लगेगा बात में पूछो। और वो जो अमृत वाला योग लगेगा उससे उसमें विकर विनाश होंगे। फिर आज जो गलतियां हुई थी ना कल वो गलती नहीं होंगी। गलती में ना आज आपको व्यक्ति सामने आएगा ना उसको देख के रोज गुस्सा आता था, आज विकर विनाश में इसका क्या निशानी है, आज भी उसको देखेंगे ना याद ही नहीं आएगा, उसका अच्छा गुण नजर आएगा। देखो हम बाबा के बच्चे, अमृत वेला मुरली सुनने के बाद हम हंस बन जाते हैं, होली हंस। हंस की निशानी क्या है, हंस के सामने 99 कीड़े पड़े होंगे ना, 99 कीड़े 99 कीड़े पड़े, एक मोती पड़ा होगा, हंस को कीड़े नजर नहीं आएंगे, मोती सिर्फ नजर आएगा। और बगला होगा ना, बगला भी सफेद है, और बगले के सामने 99 अगर मोती पड़े होंगे ना, उस कीड़ा एक बीच में कीड़ा पड़ा होगा, उसको सिर्फ कीड़ा ही नजर आएगा, उसको मोती नजर नहीं आएंगे। तो अभी हमारी जीवन, जब बाबा को हम बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते, हमको सामने वाले में सारे अवगुण नजर आते हैं, गुण एक भी नजर नहीं आता। और जब अच्छा सा अमृत वेला कर लेते हैं, अच्छा सा बाबा की मुरली ध्यान सुन लेते हैं, तो हमको सारा दिन हमारे संबंधी माता पिता भाई बहन पति पत्नी दोस्त उनका सिर्फ गुण, 99 अवगुण हो, हमको उनका गुण ही नजर आता है बस, और कुछ नजर नहीं आता। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ हमारे जीवन में हो जाती है, तो हमें कोई उसका ना अवगुण नजर आएगा ना उसका ईद नजर आएगा। दादी को हम देखते थे, बड़ी दादी को देखा करते थे कि बड़ी दादी को कभी कोई बात हुई ना, अभी कुछ कोई बहन कोई कुछ बात कह के, कोई भाई कह के गया, कोई अभी कुछ ने किसने शिकायत की कुछ किया, तो दादी उससे मतलब मिली और दादी ने कुछ, दादी कभी किसी को डांटने लगाती थी, हमने देखा दादी को तो बहुत अच्छा, दादी का मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, शायद हमारी वंदना बहन जानती कैसे और कैसे दादी मैनेजमेंट करती थी। वो हेड डिपार्टमेंट का हेड आया, दादी को बोला दादी वो भाई ना ऐसे ऐसे करता है, काम नहीं करता ऐसा करता, दादी कहती अच्छा उसको मेरे पास भेज दो। अब दादी वो भाई आ गया, मैं दादी के पास बैठा होता था तो दादी मैं उठने लगता था, दादी आप उसको समझा जो भी करना आप करो, मैं तो मतलब आप मुझे क्या, आपकी मैनेजमेंट आप करो। दादी कहती बैठे रहो गुप्ता जी, आप तो घर के हो बैठो। तो मैं बैठा रहता था तो दादी फिर आता, भाई आता, भाई कहते अच्छा अच्छा तुम नाम से बोलती थी, अच्छा भाई तो अब तो 20 साल से बाबा के घर में रहते हो, इतने अच्छे हो, इतनी अपनी से सेवा की आपने, अपनी हड्डी बाबा के यज्ञ में दी है, सब कुछ किया, इतना अच्छा किया, ऐसे किया ऐसे किया। उसकी क्वालिटी दादी गिनना शुरू कर दी, फिर दादी क्वालिटी गिनती, उसके बाद दादी क्वालिटी गिनने के बाद उसकी फिर कहती अच्छा मुन्नी को बोलती, मुन्नी वो कल आई ना सुगात वो लेके आओ। सुगात मैंने कहा इसको सुगात दे रहे, उसको डांट मारनी थी। अच्छा वो भी लेके आओ ना, वो चीज भी लेके आओ, वो टोली वो नई टोली आई थी ना वो लेके आओ। दादी उसको दृष्टि देगी, प्यार देगी, कोई 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 भाई कोई कभी भी कोई देख देख कहते ना, कोई दादी को भी कुछ बात हो बता देना, दादी मुरली के बाद निकलती है ना चुपचाप आके दादी के हाथ चिटकी दे देना, कुछ आपको चाहिए कुछ बात है तो दादी को दे दे, और दादी को ना ऐसे ऐसे कर दे दो। अच्छा मेरे को कदम नहीं मिले ना कोई बात नहीं, कई बार होता है मैं सीधी कार में बैठ के कुछ हो गया, बाई चांस कोई दूसरे लोग होते हैं, कई बड़े बड़े भाई बहन भी आ जाते हैं, मुन्नी के हाथ में पकड़ा देना चिटकी, है ना, वो भाई रोना शुरू कर देता था, है ना। दादी मैं कभी दादी कुछ गलती मैं से दादी गलती हो गई, मैं आगे से कभी आपको शिकायत में मौका नहीं दूंगा, मैंने कुछ पुलक नहीं था, तुम बहुत अच्छे आराम से जाओ। फिर ऐसे ऐसे दादी करके प्यार से उसको ऐसे करके, अच्छा किसी उसको प्यार नहीं कर, डिपार्टमेंट हेड को प्यार कभी नहीं ऐसे करते थे, उसको प्यार करके भी। और सचमुच वो भाई इतना सुधर जाता था, कभी उसकी शिकायत दोबारा नहीं आएगी। दादी क्या करते उसके उसके गुण देखती थी, मैं फिर हंस वाली बात कर रहा हूँ, दादी को उसके गुण दिखाई देते थे, अब गुण दिखाई देता ही नहीं था। तो ये हमें ये हमारी अमृत वेला की वैल्यू है, ये मुरली की वैल्यू, राइट। तो ये तरीका है, इससे हमारे विक्रम आपे विनाश होते जाएंगे धीरे धीरे, इसी लगन में लगे रहो, अटेंशन, जो गलतियां हमसे होंगी क्योंकि संस्कार है, कोई मनुष्य ऐसा से गलती नहीं होगी, हर कोई ब्राह्मण से गलती ना होती, गलती सबसे होती है, गलतियां होती है पर लिखो उसको, एक्सेप्ट करो, रात को लिखो, बाबा को तो शेयर करो ना, किसी को दिखा ना रहे हो, बाबा को दिखा रहे हो ना, बाबा को लिख रहे हो ना, फिर लिख के फाड़ के डस्टबिन डाल दो, रखो मत छुपा, कोई तुम्हारा पढ़े नहीं, तुम फाड़ के डस्टबिन ऐसे छोटे टुकड़े करो ताकि कोई जोड़ के भी ना पढ़ सके, है ना, ताकि रात नींद अच्छी आवे, नहीं तो कहीं ये डर लगता है कुछ जोड़ के पढ़ना ले, है ना, तो अच्छे से फाड़ के दस मिनट डाल दो तो चला दो, नहीं तो उसको फिर, और फिर ऐसे करके सोचो, और मुरली कम से कम 20 बार तो 21 बार तो कम से कम मुरली के पॉइंट रिवाइज करो, मनन मना रिवाइज करना, चिंतन माना उसको चिंता लगाओ मुझे ऐसा बनना है, मंथन माना फिर बाबा को उसमें खो जाओ उसी चिंतन करते करते, मुझे ऐसा बनना है। बाबा आपके हर 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 महावाक्य में गोपनीयता है, रहस्य युक्त है, अमूल्य है, तो मुझे इसकी गहराई बताओ, क्या मतलब है इसका, फिर उसका मंथन, बाबा उसको बताएगा बच्चे तुम्हारा मैं ये वाक्य तुम्हारे लिए इसलिए क्योंकि इस वाक्य में सबके लिए अलग अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, अलग उसकी मीनिंग है एक ही महावाक्य, उसका मीनिंग सबके लिए अलग अलग है, तो ये बाबा फिर आपको बताएगा बच्चे मेरा ये कहने का मतलब है तुम्हारा। बाबा ने कहा बच्चे अच्छा ऐसे ऐसे मीठे बनो, तो इसका मतलब क्या है, मीठे मना सतो प्रधान बनो, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को, मीठे मीठे बाबा दो रूप देखता है हमारा, अनादि स्वरूप देखता है पावन सतो प्रधान स्वरूप, और फिर आदि देवता स्वरूप देखता है, तब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमन, दो बार मीठे मीठे क्यों बोलता है, अनादि स्वरूप के बच्चों को परम धाम में और फिर हमारा देवता स्वरूप देखकर दो बार मीठे मीठे कहते हैं, तो बाबा की हर चीज का महत्व हो ना, तो इसको हम उसको समझ करके फिर उसको कार्य में लगाओ, कार्य सिमरन में ना कार्य में लगाओ, कार्य करते करते बाबा की उस महावाक्य को याद रखो, कार्य में लगाओ, मीठे बन करके कर सत्व प्रधान बन के काम करो, तो इसको बोलते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। जब हम कार्य में लगाते तो हमारे रिकॉर्ड हो गया, अब स्मृति बन गई, स्मृति में ना स्मृति स्वरूप बन गई, हमारा संस्कार बन गया, अब जो बाबा ने हमें कहा था मुरली में आज सुबह, बच्चे ये इसलिए करना है, तुम्हें बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बुद्धि का ताला ऐसे खुलेगा, अभी मेरा संस्कार बन गया, अब ये ऑटोमेटिक का नाम से मुझसे ऑटोमेटिक होएगा, ऑटोमेटिक ये काम होएगा, तो नया संस्कार बन गया ना, नई आदत बन गई, नया कर्म बन गया, ऐसे नए संस्कार बनते जाएंगे, स्वतः प्रधान संस्कार बनते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, नए संस्कार बनते जाएंगे, और एक दिन 63 जन्म के विक्रम विनाश होंगे, पहले 84वें जन्म के विक्रम विनाश होंगे इस जन्म के बाबा का बने जो, इसमें भी जो विक्रम किए, फिर 83वें जन्म के विनाश होंगे, उसमें भी तीन स्टेज है, बुढ़ापा, जवानी और बचपन। बुढ़ापे में हम ज्यादा विक्रम नहीं होते, हमारा अमृत तेल अच्छा होगा, मुरली सब अच्छा होगा, योग भी अच्छा लगेगा, फिर जवानी आएगी तो लगना बंद हो जाएगा, लगना बंद हो जाएगा माना हमको अभी क्या होगा, हम अमृत वेला करेंगे वो लगेगा नहीं, मुरली इतनी अच्छी मुरली अंदर जाएगी नहीं, किंतु घबराना नहीं है, हमें चलते जाना है उसी में, अमृत वेला मुरली कभी मिस नहीं करना, चलते जाओ चलते जाओ। फिर थोड़े दिन बाद योग लगना शुरू, फिर बचपन आ जाएगा, बचपन में फिर योग लगना शुरू हो जाएगा, 83 जन्म पूरे होंगे फिर 82वां शुरू हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा फिर उसका, फिर योग लगता रहेगा, फिर जवानी आएगी 82 की, फिर योग लगना बंद हो जाएगा, कम लगेगा मतलब, फिर क्या, फिर बचपन आ जाएगा। तो यूं यूं होगी हमारी स्थिति, कभी ऐसे नहीं होती कि यूं ऐसे नहीं चलती, ब्राह्मणों की स्थिति कभी एक रस नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब बाबा के बनते हैं तो उसको बोलते हैं स्यूडो हनीमून पीरियड, शुरू में हनीमून पीरियड होता है बाबा के साथ, हनीमून समझते हैं ना, हनीमून माना बाबा बस हर समय बाबा साथ है, बाबा प्यार कर रहा है, बाबा ऊपर गए, बाबा से प्यार, बस हर समय बाबा का प्यार ही प्यार अनुभव हो रहा है, दुनिया ही अलग लग रही है, जैसे शादी होती है ना, पति कुछ कहता है तुम्हें चांद के तारों के पास ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, वहां ले जाऊं, है ना, तो कोई चांद तारों के पास जाते नहीं है, पर वो पति बोलता है तो लगता है यहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में जब सास घर आते हैं, फिर सास आके डांट मांट मारती है, सीधा करती है, कान खींचती है ना, तो तुझे काम नहीं आता, तुझे बर्तन भी नहीं मांजने आते, रोटी भी नहीं बनानी आती, क्या रोटी बनाती है, इंडिया का नक्शा बना दिया तुमने, क्या करती है ना। पति कहता है कि तुम्हें खाना नहीं बनाना था, सब्जी बनाने नहीं आती, क्या पत्नी पल्ले पड़ गई, है ना, तो बाद में फिर अकल आती है ना। तो फिर ये जो है ये पीरियड ऑफ केओस कहते हैं इसको, है इसमें क्या 63 हमारा ऊपर नीचे, पर हम देखो अभी माउंट नीचे से ऊपर आए, माउंट आबू है, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे ही हमारा लगता है कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, पर हमेशा ऊपर ही आ रहे हैं ना, कि देखो तो ऊपर ही आ रहे ना, बीच में ऊपर ही आते जा रहे हैं ना, एक फिर पांडवन पहुंचे गए ना, आफ्टर ऑल नीचे ऊपर होते होते पांडवन पहुंचे, ऐसे ही करते करते हम लोग 21वें जन्म पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम विक्रमाजीत बन गए, ठीक है, ऐसे विक्रमाजीत, पर अटेंशन रखना ये नियम, अमृत वेला कभी मिस ना हो, मुरली कभी मिस ना हो, 20-21 बार मुरली पढ़ना कभी मिस ना हो, और सोने के पहले सच्चाई से चार्ट लेटर लिखना, चार्ट भरना, मुरली पढ़ना, बाबा को याद कर सो जाना, ये चार नियम में कभी कोताही ना बरतो, ठीक है, ये चार नियम पक्के ध्यान रखना, ठीक है, तो आपके विक्रम अपने आप विनाश, फिर रियल हनीमून पीरियड आएगा, रियल माना फिर विक्रमाजीत बन जाएंगे, फिर कर्मातीत, कर्मातीत माना फिर हमारी बैटरी चार्ज होगी, अभी हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती, जितनी चार्ज होती उतनी डिस्चार्ज हो जाती शाम तक, फिर वैसे के वैसे ही, है ना, सुबह नहाए धोए शाम तक गंदे हो गए, है ना, फिर सुबह नहाए धोए फिर गंदे हो गए ना, शाम तक लगता वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ते हैं, किंतु हमारे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा, ऊपर भी नीचे, ऐसे होते, फिर एक दिन पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच जाएंगे, वो विक्रमाजीत स्थिति हो जाएगी, फिर कर्मातीत, कर्मातीत होने के बाद हमारी बैटरी संपन्न संपूर्ण चार्ज हो जाएगी, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, फिर अव्यक्त बन जाएंगे, अव्यक्त माना फिर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, हमारी वृत्ति से सेवा होगी, हमारी भावनाओं से सेवा होगी, हमारे संकल्पों से सेवा होगी, फिर अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता माना अब हमारा इससे धरती से अटैचमेंट नहीं रहेगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो खत्म हो गया, अनकॉन्शियस माना 63 जन्म को जो पाप किए हुए ना वो अनकॉन्शियस माइंड में भरे हुए, 63 जन्म के अब सारे पाप विनाश हो जाएंगे, 63 जन्म भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड भी स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ मतलब कॉन्शियस हो जाएगा, अब 100% मन कॉन्शियस हो गया, मन उसे फरिश्ता कहते हैं, देवताओं का अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता नहीं, उनका 100% माइंड कॉन्शियस होता है, फरिश्ता उसे फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता उसे अवेक फरिश्ता माना, अब हमारे संकल्प सारी दुनिया तक असर करेंगे, हमारे साक्षात्कार जगह जगह हमें शुरू हो जाएंगे, कोई धरती में दबा होगा, भूकंप आएगा दबा होगा, उसको साक्षात्कार होगा, उसको साक्षात्कार वहां हो रहा होगा, उसको हम बैठे अपने यहीं पे मधुबन में होंगे, अपने घर में ही पानीपत में बैठे होंगे, किंतु साक्षात्कार जगह जगह हमारे पूरे होंगे, लोग हमारे और समथिंग हमारे हमारे मस्तक से बाबा दिखाई देगा उनको, हमें हमें उनको देख हम हमें उनको सामने जाते उनको अपने को देवान भूल जाएगा, अपने को आत्मा समझना शुरू कर देंगे, शांति प्यार खुशी अपने आप मिल जाएगी, दानी वरदानी स्थिति आ जाएगी उनको, ज्ञान का दान हो जाएगा देखते ही और वरदान मिल जाएगा शांति प्यार खुशी का, उनकी मुक्ति हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा और उनको यही रूप याद रहेगा, हमारा इष्ट रूप याद रहेगा और वो फिर द्वापर में आके हमारी पूजा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दानी और वरदानी तो अंत में हमारी फरिश्ता से थी, और जब ये पर्दा हट जाएगा तो उस दिन जो विनाश हो रहा होगा तो हमें सत्यों के सीन सीनली नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी उसमें एक दो हो जाएगी, एक दो माना हम अभी तक सूक्ष्म बदन परम धाम में रहेंगे तो हमारे सत्य की फाइलें खुल जाएंगी, दुनिया में विनाश होगा हमें सत्य की सीन सीनली दिखाई दे रही होंगी, दुनिया वाले कहेंगे हाय मरा, हम कहेंगे हाय गया, वाह गया, वाह मैं तो स्वर्ग में गया, है ना, दुनिया वाले क्या कहेंगे हाय मरा, और हम क्या बोलेंगे हम तो स्वर्ग में गया, विनाश विनाश दिखाई नहीं देगा, देखते भी दिखाई नहीं देगा, बाबा कहते हैं वो लोग हाय हाय करेंगे और तुम खुशी के घुंघरू पहन के नाचोगे। ठीक है, तो ये जो है उस अंत का सीन होगा, था ना लास्ट संडे की मुरली, आने वाली दुनिया कैसी होगी, वो अभी दिखाई दिया करेगी, अपना पद दिखाई देगा, अपना अपनी महल दिखाई देगा, वो सब कुछ अभी अभी दिखाई देगा। ओके, तो ऐसे विक्रम विनाश होगा है, अष्टबा अष्टन को अंदर बजती रहती मुरली हमेशा ही अंदर बज, वो मुरली वैसे पढ़ते पांच छह बार तो पढ़ते ही है, दादी पांच बार पढ़ती थी, बड़ी दादी है ना, बड़ी दादी पांच बार पढ़ती थी, तो सोने के पहले पढ़ती थी सुबह सुबह, फिर अमृत तिला करके पढ़ती थी, फिर क्लास में ऐसे मतलब फिर दिन में पांच बार, टोटल पांच बार तो पढ़ती थी सोने के पहले पढ़ती थी, तो ये दादी का पांच बार था, पर दादी को हमेशा याद रहती थी, हम दादी को चेक करते थे बीच बीच में ना, दादी आज बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे क्या था, कहते मुठे बार बार क्यों पूछता है दादी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो दादी लास्ट में भूल जाती थी ना कई बार बात दादी के थोड़ी सी, तो दादी को हम कहते दादी, तो फिर दादी बताती थी बाबा ने आज ये कहा, बाबा बड़े प्यार से दादी बोलती थी बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये कहा, पांच दस पॉइंट ऐसे बता देते दादी बता देती थी, तो मतलब दादी को मतलब ऐसे दादी को ऐसे था, तो दादी की तो बहुत सारी बातें हैं। ओम शांति। ठीक है, विक्रम विनाश हो गया सभी,
कान खुल गए, दिल को राहत आ गई, दिलाराम बाबा बैठ गया है ना, दिल की बातें दिल वाले डॉक्टर ही जाने और बाबा जाने, तो जोरदार ताली बजाओ। देखो ड्रामा इतना एक्यूरेट है, कल अगर भाई साहब आते थे तो एक ही घंटा मिलता था, तो आपकी शायद दिल की अरमा जो थी ना वो पूरी नहीं होती थी, और वो बाबा को आज दिल की अरमा पूरी करनी थी, इसीलिए ड्रामा कितना एक्यूरेट है और कितना कितना वंडरफुल है, उसको हम अनुभव करते हैं, तो सबके दिल में डबल ठंडक का अनुभव हुआ, तो अभी ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे ना, बिल्कुल। तो एक हाथ है, सभी भाई सबको कहे, आज बारिश भी बहुत थी, आपको पता है घाट चढ़ने में बड़ी मुश्किल आता थी फॉग के कारण, तो भाई सबका फोन आया कि वंदना बहन थोड़ा लेट होगा, हमने कहा चलेगा लेकिन आपको आना जरूर है, वो निकल पड़े थे, तो इसीलिए देखो बाबा हर बात से भरपूर संपन्न करते, अभी हम सभी 7:30 बजे तक बाबा की याद में बैठेंगे, वो पावरफुल याद।